Om Shanti. As rightly said by Dr. APJ Abdul Kalam, life and time are the world's best teachers. Life teaches us to make good use of time, and time teaches us the value of life. और इसी motivational quote के साथ हम आप सभी का स्वागत करते हैं आज के हमारे इस webinar में जो है हमारे प्यारे प्यारे teachers के लिए. Teachers, architect of future generation, as they design the architecture of students' life. So we wish you all a very, very happy Teacher's Day. Our program is also going on live on YouTube. You can even connect from there also. तो प्रोग्राम को शुरू करते हुए हम आपको पहले कुछ विशेष बातों को बता दें. तो हमारे जो मॉर्निंग और इवनिंग की जो सेशन है उसकी डिटेल हम आपसे शेयर करना चाहते हैं. So there are going to be a two session in today's webinar, morning from 10 a.m. to 12 noon. और इस सेशन में हमारे साथ जो एमिनेंट लोग जुड़े हैं, आइए उनके बारे में आपसे डिटेल शेयर करते हैं. So former Union Minister of Education, Honorable Shri Ramesh Pokhriyal ji, Rajyogi Dr. B.K. Mrityunjay Bhai ji, Chairperson Education Wing, और Motivational Speaker B.K. Sister Shivani. Evening का session 5 to 7 का रहेगा, जहां पर talk between श्री शिव खेरा जी, मोटिवेशनल स्पीकर, ऑथर एंड लाइफ कोच, एंड सिस्टर बी के जिन्ना जो डायरेक्टर ऑफ मेडिटेशन म्यूजियम वॉशिंगटन डीसी यूएसए के हैं, उनके साथ साथ हमारे बी के प्रोफेसर मुकेश भाई जी आपको थॉट लैब के बारे में बताएंगे जो जयपुर में वहां से वो कंडक्ट करते हैं. सो ऑल द पार्टिसिपेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू ज्वाइन द सेशन 10 मिनट्स बिफोर इट स्टार्ट्स. प्लीज कीप योरसेल्फ म्यूटेड. The host will unmute you when it's required. There will be a quiz in the morning session after Sister Shivani's session. There will be a quiz. The top three winners will be awarded books by Shri Shiv Khera ji in the evening session. So, all are requested to attend both the sessions. Translations are available in Hindi and English also. You can choose interpretation. तो आपके पास एक सिंबल आ रहा होगा इंटरप्रिटेशन का, वहां पे आप जाएंगे तो आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ट्रांसलेशन वहां पे मौजूद है. अ राजयोग मेडिटेशन कोर्स विल स्टार्ट फ्रॉम 8th ऑफ सितंबर दिस मंथ. सो दोज हु वांट टू ज्वाइन द कोर्स प्लीज क्लिक ऑन द लिंक इन द चैट बॉक्स टू ज्वाइन अ व्हाट्सएप ग्रुप. वी शुड ऑल्सो बी हैविंग अ काउंसलिंग सेशन टूडे फ्रॉम 6 PM टू 7 PM. सो You all are requested to attend that. और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पुस्तकों की तरह संगीत भी हमारे जीवन को सकारात्मक बनाती है, तो आइए आप सभी को ले चलते हैं संगीत की दुनिया में, जहां हम सब मिलकर स्वागत करते हैं एमिनेंट इंडियन सिंगर हरीश गोयल जी का, वन ऑफ द फाइनलिस्ट ऑफ इंडियन आइडल सीजन 1 के, और उन्होंने बहुत सारे टीवी शोज में भी परफॉर्म किया है और मैं जानती हूँ आप सभी ने उनके गाने तो जरूर सुने होंगे. सो वी होल हार्टेडली वेलकम यू ब्रदर इन टुडेस वेबिनार. ओम शांति.
ओम शांति प्रीति जी. सबसे पहले तो सभी लोगों को आज टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई. और जैसा कि हम सभी को पता है कि जो परम सदगुरु परम शिक्षक है उन्हीं को याद करते हुए हम इसको एक म्यूजिकल कनेक्ट देते हैं आज के प्रोग्राम. बहुत सारे अच्छे अच्छे स्पीकर हैं, आप सबको बहुत नमन. सो आई हैव अ पियानिस्ट ऑल्सो हियर, ही विल एक्सेप्ट मी.
कभी छाव बन कर कभी ना बन कर कभी छाँव बन कर लहरों में कभी ना बन कर लड़खड़ा एक कदम आमा है जब लड़खड़ाए कदम मेरे बाबा है सा
थैंक यू सो मच ब्रदर, और हमेशा की तरह आपने आज भी हम सब का मन मोह लिया है इस प्यारे से बाबा के सॉन्ग के बाद. थैंक यू वंस अगेन. नाउ आई इनवाइट बी के शिविका बहन, हेडक्वार्टर्स कोऑर्डिनेटर एजुकेशन विंग, नेशनल कोऑर्डिनेटर फॉर राजयोगा एजुकेशन एंड कॉन्शियसनेस इंप्रूवमेंट प्रोग्राम फॉर एजुकेटर्स, एंड हैज कोऑर्डिनेटेड मेनी कॉन्फ्रेंसेज, रिट्रीट, ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड एजुकेशनल कैंपेन. वी वेलकम शिविका बहन.
ओम शांति.
ओम शांति दीदी.
अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू. आप सभी टीचर्स का, शिक्षक गणों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वेबिनार में. विशेष ये वेबिनार जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, आज का दिन बहुत विशेष है. सभी टीचर्स को लोग याद करते हैं, और निश्चय ही टीचर्स तो मुझे लगता है कि ऐसे होते हैं जिनको हमेशा ही याद किया जाता है, सारी जिंदगी याद किया जाता है. जैसे कि कहा जाता है ना कि टीचिंग इज द वन प्रोफेशन दैट क्रिएट्स ऑल अदर प्रोफेशंस, राइट. तो टीचिंग मुझे लगता है कि सारे स्टूडेंट्स जो हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बड़े बड़े होकर के बड़े बड़े काम करते हैं, लेकिन शुरुआत तो एक टीचर से ही होती है. तो हम भी आज तक अपने टीचर्स को भूल नहीं पाए हैं, और आप भी नहीं भूल पाए होंगे. आप सब भले ही टीचर्स बैठे हैं, लेकिन कोई भी अपने टीचर्स को नहीं भूल पाता है कभी. तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है. हम अपने हर कर्म से, हर कदम से किसी ना किसी को कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं. तो आज के हमारे इस वेबिनार में बहुत प्यारे प्यारे हमारे गेस्ट जुड़े हैं. सबसे पहले तो मैं अपने प्यारे भ्राता जी हरीश मोयाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और आपका स्वागत भी करती. आपने इतना प्यारा गीत हमारे सामने आपने गाकर के सुनाया. और देव मोयाल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत हमारे इस वेबिनार में. आपने इतना अच्छा पियानो हम सबके लिए बजाया. थैंक यू सो मच हरीश जी और देव भाई. और उसके साथ साथ हमारे आदरणीय मृत्युंजय भाई जी, जो एजुकेशन विंग ब्रह्मा कुमारी के करीब 20 विंग्स हैं, जिसमें से एक विंग है एजुकेशन विंग. आप ब्रह्मा कुमारी के एजुकेशन विंग के चेयरमैन हैं. मैं आपका तहे दिल से आप इस वेबिनार में स्वागत करती हूँ. भ्राता जी का पूरा ही जीवन एक उदाहरण के रूप में रहा है. आप हर कदम में हमने देखा है, इतने डायनामिक्स को लेकर के, इतने उमंग उत्साह को लेकर के अपना कार्य करते हैं. और उसके साथ साथ हमारे आदरणीय फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ऑनरेबल श्री रमेश पोखरियाल जी. रमेश पोखरियाल जी के साथ हमारा बहुत प्यारा रिश्ता है, बहुत पुराना रिश्ता है, संबंध है. आप हमारे संस्था के साथ जुड़ करके काफी प्रोजेक्ट्स हमें आपने करने का सौभाग्य हमें दिया. जब आप अपनी मिनिस्ट्री को ज्वाइन किया तब भी, और जब आप चीफ मिनिस्टर थे उत्तराखंड में तब भी. और उस संबंध से हमने जब भी आपको अपने प्रोग्राम्स में इन्वाइट किया, तब आप हमारे प्रोग्राम्स में शामिल हुए हैं. और बहुत सारी दुआएं हमें आपसे प्राप्त हुई है। थोड़ा स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण से रमेश पोखरियाल जी ने कल हमें एक वीडियो रिकॉर्ड करके अपना मैसेज भेजा है, फिर भी तबीयत ना ठीक होने के कारण भी फिर भी आपने इतना कष्ट किया कि आप वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करके हमारे सभी टीचर्स के लिए भेजे, उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद देती हूँ और हम वो सब भी सुनेंगे। उसके साथ हमारी आदरणीय दीदी सिस्टर शिवानी, जो जिनसे सभी भली भांति परिचित है, शिवानी बहन को कोई नहीं कौन है जो नहीं जानते हैं, हमारे संस्था को कहें एक किस स्तर से एक बहुत ऊंचे स्तर पर लाने का आपका बहुत बड़ा योगदान है, तो शिवानी बहन का भी हम स्वागत करते हैं और 11 बजे हम उनका सेशन भी सब सुनेंगे। उसके साथ साथ हम एक क्विज भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो वो भी हम शिवानी बहन के बात करेंगे। और शाम के सत्र में हमारे जो गेस्ट रहेंगे शिव खेरा जी और सिस्टर जैना, और उसके बाद हमारे काउंसलिंग के एक्सपर्ट्स, तो जो भी हमारे इस वेबिनार में शामिल हुए हैं सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिवादन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और सभी टीचर्स, प्रिंसिपल्स, लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स, और मुझे लगता है कुछ बच्चे भी ज्वाइन हुए हैं इस वेबिनार में, तो आप सबका भी बहुत बहुत दिल से स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। आई होप आपको पूरा ही आज का ये पूरा दिन बहुत आपके लिए शिक्षाओं भरा हो, बहुत सुखद हो और आपका सारा ही जीवन सुखद हो, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। ओम शांति।
ओम शांति दीदी, थैंक यू सो मच फॉर ब्रीफिंग अस, और हम सबको पूरे प्रोग्राम की डिटेल्स मिल गई हैं। तो अब हम अपने आदरणीय ऋतिक भाई जी को बुलाते हैं, जो सिंपल पर्सन है विद बोथ कंटेम्पलेशन एंड एक्शन। सो लेट्स वेलकम मृत्युंजय भाई जी।
ओ शांति। परम शिक्षक, परम शिक्षक, परम सद्गुरु, परम पिता परमात्मा को याद करते हुए आज इस विशेष टीचर्स डे के समय वेबिनार में जुड़े हुए सर्व शिक्षकों को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमस्ते कहता हूँ, ओम शांति कहता हूँ। हम हमारा भारत का संस्कृति है आचार्य देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव हम कहते हैं, क्योंकि आचार्यों को, शिक्षकों को एक देवता समान देखते हैं, क्योंकि देवता अर्थात देने वाले। इसके लिए आज इस विशेष टीचर डे के रूप में हम सारी भारत वर्ष के निवासी आयोजन किया है, ऑर्गेनाइज किया व परंपरा से हम लोग व्यवस्था करते आए इस टीचर डे को डॉक्टर राधाकृष्णन की बर्थडे की मेमोरी में, क्योंकि एक टीचर कैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और केवल प्रेसिडेंट ही नहीं है, वो भारत रत्न अवार्डी भी थी। ऐसा व्यक्तित्व का जीवन को याद करना और टीचरों को ऐसे व्यक्तित्व का जीवन बनाना हमारा कर्तव्य है। ऐसी कार्यक्रम में हमको प्रेरणा देने के लिए इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि हमारा परम आदरणीय भ्राता रमेश पोखरियाल जी, जिन्होंने पूर्व में भी उत्तराखंड का मुख्यमंत्री के रूप में सेवा दिया है, और साथ साथ में इस देश के एक नया शिक्षा नीति के प्रस्तुत करके पार्लियामेंट में इसको पास करा करके एक नया सोच को, नया आयाम को, नया विधि और नया प्रेरणा दिया है। इसके लिए हम सब इसको नमन करते हैं, और साथ साथ में आज की कार्यक्रम में, शाम के कार्यक्रम में ज्वाइन होने वाले, अभी के कार्यक्रम में ज्वाइन होने वाले हम सब का प्रिय बहन, और बहुत इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को एक ऊंचाई तक ले जाने के लिए अपने कर्मठ के द्वारा, अपने वाणी के द्वारा, अपने सिद्धांतों के द्वारा, अपने सदा प्रसन्नता के द्वारा इन्होंने किया, वो शिवानी बहन है। और हमारा इस कार्यक्रम को बहुत सुचारू रीति से ऑर्गेनाइज किया, हम सबको वेलकम किया शिविका बहन, और इस कार्यक्रम को बहुत सुंदर रीति से ऑर्गेनाइज करके आज कंडक्ट कर रहे हैं प्रीति बहन जी चंडीगढ़ से, और साथ साथ में शाम की बहुत अच्छे अच्छे आतर से शिव केरा जो आतर है, मोटिवेटर है, कोच है, उसको भी, प्रोफेसर मुकेश अग्रवाल जी विदेश से भी, वॉशिंगटन से जुड़े हुए जन्ना बहन, और अन्य देश की अनेक अलग अलग स्थानों से जुड़े हुए शिक्षकों को मैं पुनः नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। टीचर्स का प्रथम कर्तव्य मैं समझता हूँ शेयरिंग, केयरिंग एंड इंस्पायरिंग। हर अपने ज्ञान को शेयर करना, साथ साथ में केयर भी करना और इंस्पायर करना, मोटिवेट करना, उसके माध्यम द्वारा, अच्छी ज्ञान के माध्यम द्वारा मनुष्यों को एक एम्पावर करना, उनका लाइफ का आर्किटेक्ट बनना व देश की आर्किटेक्ट बनना, मनुकुल का एक नया आयाम देना, आया शांति और सुख का अनुभव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए ऐसी शिक्षा का बीजारोहण करना, ये शिक्षकों का प्रथम कर्त। साथ साथ में केवल शिक्षा देना ही नहीं है, उनको एक एग्जाम्पल के रूप में खुद को प्रस्तुत करना है, और एग्जाम्पल रूप में जो प्रस्तुत करते हैं इज कंसिडर्ड एज ए ग्रेट टीचर। और उससे भी आगे इंस्पायर करना, सो बच्चों को इंस्पायर करना, समाज को इंस्पायर करना, समाज के अनेक प्रकार के कुरीतियों को निर्मूलन करने में शिक्षकों का भी योगदान है, इसके लिए उनको भी मोटिवेट करना है समाज में, इसके लिए उसको मोटिवेटर भी कहा जाता है। इसके लिए शिक्षकों का रोल है, टीचर्स का रोल है, सरकारी नौकर नहीं है, इज ए नोबल प्रोफेशन, इज एन आइडियल प्रोफेशन, इज एन इंस्पायरिंग प्रोफेशन। इस प्रोफेशन एक सारी जीवन को निर्माण करने के कार्य में उनके बहुत बड़े योगदान है, इसके लिए उनको आचार्य देवो भव का अर्थात देवता का सम्मान भारतवर्ष में सदियों से उनको पूजते आए हैं, परंतु कुछ समय से, कुछ वर्षों से इस देश में भी और विदेशों में भी टीचर्स की जो वैल्यू घटते जा रहा है, क्योंकि हम लोग एक मैकेनिकल वे में चले गए, वो आदर्शता को भूल गया। अब हमने जो पढ़ाया उसी को ही शिक्षा समझ करके पढ़ाते हैं, वो तो अच्छी बात है, परंतु साथ साथ में अपने जीवन को एक उदाहरण के रूप में, और जैसे मैं देखता हूँ प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, हमारा दादिया सब टीचर्स ही कहते हैं, परंतु एक एक दादी हजारों भाई बहनों का जीवन को पवित्र बनाया, उसको इंस्पायर किया, मोटिवेट किया, और सत्यता के आधार से चलने के लिए, शांति पूर्वक जीवन जीने के लिए, लोगों को सेवा करने के विधि से आगे सेवा करके उनके अंदर जीवन में कल्याण करने का विधि में जोड़ते हैं। ऐसी टीचर्स को हमको भारत का उज्जवल भविष्य देखना है, और श्रेष्ठ भारत को देखना, गरीबी मुक्त भारत को देखना, समानता की इक्वालिटी को देखना है, और पॉवर्टी से मुक्त करना, और भय से मुक्त करना, चिंता से मुक्त करना, रोग से मुक्त करना, ऐसे अनेक महान कार्य को करने के लिए मैं समझता हूँ टीचर्स बहुत सबसे बड़ा प्रथम कर्तव्य है। इसके लिए टीचर्स को ये कार्य को करने के लिए खुद को भी एग्जाम्पल बना। हमारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य है टू मेक ह्यूमन सोसाइटी, सबसे पहले जो है ना क्राइम फ्री सोसाइटी, जो अपराध मुक्त समाज का निर्माण करना, इसमें योगदान टीचर्स का बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा जो है डिसीज फ्री लाइफ एंड डिसीज फ्री सोसाइटी, को रोग मुक्त समाज बनाना, रोग से दूर रखने के लिए हमको जीवन शैली, खाने पीने से लेकर के सोचने से लेकर के संस्कारों को बनाने में, इन सभी बातों में उसका महत्वपूर्ण बात होती है। इसके लिए ऐसी करने के लिए डिसीज फ्री, देन पॉवर्टी फ्री, नॉलेज इज पावर कहा जाता है, नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है, नॉलेज इज वे टू लिबरेशन के लिए भी कहता है। इसके लिए जब ज्ञानवान बनते हैं, शिक्षकवान बनते हैं, तो अपने मन की पॉवर्टी, संस्कारों में भी पॉवर्टी व समाज में जो पॉवर्टी है, इस पॉवर्टी को दूर कर सकता है, पॉवर्टी से मुक्त कर सकता है। इससे भी बड़े आज के समाज में जो देखने को जो मिलता है, पॉल्यूशन फ्री सोसाइटी, जो पॉल्यूशन फ्री, जो मानसिक पॉल्यूशन है और साथ साथ में एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है, और प्रकृति को हम नष्ट करते जा रहे हैं, पर्यावरण को दूषित करते जा रहे हैं, ऐसी पर्यावरण को भी शुद्धिकरण करना, पॉल्यूशन फ्री समाज बनाना, एक कर्तव्य टीचर्स का भी है, समाज का हर वर्ग का, परंतु मोटिवेशनल, मोटिवेट करके लोगों को एक एग्जाम्पल को प्रस्तुत करना, इसके लिए टीचर्स का, क्योंकि टीचर्स को जैसे अभी अभी हमारा शिविका बेन ने कहा, हम दुनिया में बहुत लोगों को भूल जाते हैं जीवन की यात्रा में, परंतु टीचर्स को हम भूलते नहीं। क्यों? टीचर्स कुछ न कुछ देते हैं, कम से उनको जीवन बनाने के लिए प्रेरणा देते हैं। उनके साथ लगभग कम से कम एक एक विद्यार्थी अपने जीवित काल में लगभग कई साल तक बीतते हैं, पर प्रतिदिन उनके साथ बीतते हैं। और ऐसी समय पर ऐसे एग्जाम्पल हम प्रस्तुत करेंगे, मैं समझता हूँ हमारा देश भारत एक दिन वसुदेव कुटुंबम के जो संस्कृति थी उसको पुनर्स्थापन करने में और भारत को विश्व गुरु बनाने में हम प्रथम बन सकते हैं। और भारत विश्व गुरु बनेंगे तो सारी विश्व में एक नया समाज का, एक नया संस्कृति का, नया इतिहास को रचने में भारत प्रसिद्ध हो सकता है। और भारत बनेंगे तो सारे विश्व ऑटोमेटिकली बन सकता है। इसके लिए हम टीचर्स को केवल एक महान टीचर डॉक्टर सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के बर्थडे मनाना, अर्थात हम सबका भी बर्थडे, हम सबका जीवन एक श्रेष्ठ जीवन, पवित्र जीवन, पावन जीवन, पुण्य जीवन और दिव्य कर्तव्यों को करने का जीवन, और ऐसी जीवन जीने की कला खुद भी सीखना और सिखाना। कुछ तो बोल के सिखा सकता है, परंतु कुछ कर्म करके सिखा सकता है, कुछ संस्कार के आधार से सिखा सकता है। ऐसी श्रेष्ठ संस्कार वाले हम सभी बनेंगे तो मैं समझता हूँ टीचर्स देश की आधा कार्य जो नेता नहीं कर सके, अन्य लोग नहीं कर सके, साइंटिस्ट नहीं कर सके, पर साइंटिस्ट को भी निर्माण करने में उनको ऐसी श्रेष्ठ विचारों से आविष्कार करने की जो प्रेरणा देते हैं वो फाउंडेशन लगाते हैं, वो टीचर्स है। इसके लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक टीचर भी रहा और साइंटिस्ट भी रहा और देश का निर्माण का कार्य में भी लगे हुए थे। इसके लिए ऐसा उदाहरण हमारा देश में बहुत मिलते हैं, चाहे सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के साथ साथ और डॉक्टर विश्वेश्वरैया जो भारत रत्न अवार्डी थे, वो भी एक जमाने में टीचर थे, उसके बाद में उन्होंने इंजीनियरिंग में देश में बहुत बड़े बड़े यादगार का रूप छोड़ के गया। और ऐसी ऐसे टीचर्स हम लोगों को देखा है हमारा भारत में, और एक एक स्वामी विवेकानंद का जैसे एक एक टीचर एक एक विवेकानंद को भी सृष्टि में निर्माण कर दे, ऐसा श्रेष्ठ व्यक्तित्व का निर्माण करे, मैं समझता हूँ भारत कुछ ही समय के अंतराल में विश्व गुरु बन सकता है। क्योंकि आज हमको ऐसे टीचर्स की आवश्यकता है। टीचर्स आर नॉट जस्ट एन एम्प्लॉय, और उनको नौकरी करने के लिए एक नौकर बन करके सरकार का व समाज का और एक व्यवस्था का अधीन रह करके काम करने वाला नहीं, वो अधिकारी बनाने वाले, मन का अधिकारी, संस्कारों का भी अधिकारी, प्रकृति का भी अधिकारी, परिवर्तन करने के प्रक्रिया में नेतृत्व देने के अधिकारी, ऐसी अधिकारी बनाना, अर्थात कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर को उन बच्चों के साथ शेयर करना, हर बात में व्यर्थ को समाप्त करके श्रेष्ठता और दिव्यता और पवित्रता को बिखेरने वाले किरण, लाइट एंड माइट हाउस बनना चाहिए। लाइट एंड माइट हाउस टीचर्स बनेंगे सब तो ऑटोमेटिकली हमारे बच्चों में बहुत उमंग उत्साह रहेगा, और बच्चे भविष्य का निर्माण करने में भी उनका श्रेष्ठ रोल रहेगा। जैसे पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, मैं सकता हूँ ब्रह्मा बाबा को हम सब याद इसके लिए करते हैं, उनका इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का स्थापना के समय में बहुत यंग कन्या भाई लोग और कुमार लोग बाबा के संपर्क में आए, बाबा उन सबको टीचिंग दे करके उनको ऐसी एक व्यक्तित्व का निर्माण किया, वो लोग देश के कल्याण, विश्व के कल्याण और मानव कुल का कल्याण, एक नया भारत का निर्माण का विजन लेकर के उन्होंने जैसे अवतरित आत्मा के रूप में है, इसके लिए फरिश्ता बनने का, देवता बनने का संस्कार उन्होंने जागृत कराया। इसके लिए टीचर्स तो मनुष्य को देव मानव बना सकता है, मनुष्य को महामानव बना सकता है, मनुष्य को विश्व परिवर्तक बन सकता है, मनुष्य को एक आदर्श पुरुष के रूप में बना सकता है, बहनों को भी। इसके लिए ऐसी टीचर्स हम एग्जाम्पल के रूप में अपना जीवन को प्रस्तुत करना, और मेरा विचार ये है। और हम लोग पूर्व में हम कविता कहते हैं इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट, परंतु आज के समाज में देखते हैं इफ मनी इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट समथिंग लॉस्ट, आफ्टर हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग लॉस्ट, ऐसा करके लोगों ने उसके प्रायोरिटी को चेंज कर दिया, चरित्र निर्माण का कार्य अपना मुख्य इम्पोर्टेंट कर्तव्य है। इसके लिए ऐसे आदर्श को प्रस्तुत करना हमारा कर्तव्य है, ये हम भूल गए। इसके लिए मैं अनुरोध करता हूँ टीचर्स को दिव्य ज्ञान देने में, दिव्य चक्षु को अपनाने में, तीसरा नेत्र को एनलाइटनमेंट की तरफ जाने के लिए टीचर्स मदद कर सकता है। जितना टीचर्स को स्पिरिचुअलिटी अडॉप्ट करते हैं और योग करते हैं, योग के माध्यम द्वारा अपनी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, अपने ज्ञानेंद्रियों को बुद्धि संस्कार को शुद्धिकरण कर सकते हैं और समाज को प्रेरणा दे सकते हैं और उनके अंदर ऐसी एक एग्जाम्पल बन सकते हैं और ऐसे बनने वाले सदा देश में पूजनीय बन सकता है। मैं ऐसा पूजनीय बनने वाले टीचर्स को प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमस्ते करता हूँ और सदा उनको ब्रह्मा बाप समान बने और आदि देव समान देवता का संस्कार अपने जीवन का एक अंग बनाए, ऐसी संस्कार सुसंस्कृत वाले बन जाए तो मैं समझता हूँ भारत विश्व गुरु बनेगा। मैं इस कार्य में जुड़े हुए सभी को मैं आह्वान करता हूँ, पुनः नमस्कार करता हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति,
ओम शांति। भाई जी थैंक यू सो मच, और आपने हर बार की तरह हमें फिर वो जोश और उमंग उत्साह भर दिया और हम सब टीचर्स जो भी कनेक्टेड हैं वो सब जान गए हैं कि हम सबको मिलकर फिर से वसुदेव कुटुंब को जरूर अपने इधर जीवन में लाना है। सो लेट्स मूव अहेड। इट्स आर ऑनर टू हैव अमंगस्ट अस आवर चीफ गेस्ट फॉर द डे ऑनरेबल श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, एन इंडियन पॉलिटिशियन बिलोंगिंग टू भारतीय जनता पार्टी। He was a chief minister of Uttarakhand from 2009 to 2011 and former union minister of education. So let's welcome you, sir, in today's webinar.
नमस्कार। शिक्षक दिवस के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित परम श्रद्धेय आदरणीय भाई मृत्युंजय जी, कुलाधिपति ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय, आदरणीय बहन शिवानी जी जिनको हम बहुत ही आदर के साथ पूरे देश और दुनिया उनको सम्मान देती है, आदरणीय बहन शिविका जी और कार्यक्रम में जुड़े देश और दुनिया के सभी अतिथिगण, सदस्यगण और मेरे शिक्षक भाई और बहनों, मैं सबसे पहले तो देश विदेश से जुड़े अध्यापकों, ब्रह्म कुमारी परिवार के सम्मानित सदस्यों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, उनका वंदन करता हूँ। मुझे भरोसा है कि विश्व की इस महामारी कोरोना के काल में आप सभी लोग सुरक्षित होंगे, आपके परिवार के सभी लोग स्वस्थ होंगे। मैं आपको शुभकामना देने के लिए आपके बीच आया हूं। आज शिक्षक दिवस है और मैं हमेशा से शिक्षकों के साथ बातचीत करना, उनकी आशाओं और आकांक्षाओं को समझना और उनके अनुसार काम करने के लिए हमेशा से उत्सुक रहा हूं। जब मैं शिक्षक की बात करता हूं तो मैं शिक्षक के रूप में अपने प्रारंभिक जीवन को याद करता हूँ। एक शिक्षक से और शिक्षा मंत्री तक की मेरी यात्रा तमाम उन पड़ावों से होकर के गुजरती है जिसे मैं बहुत अच्छे तरीके से एहसास कर सकता हूँ, करता हूँ, और इसीलिए मेरे लिए हमेशा और हमेशा शिक्षक मेरे श्रेष्ठतम लोगों में, मेरे मन और मस्तिष्क में हमेशा छाया रहता है। मैं समझता हूँ कि आप और सभी शिक्षकगण अपने शिष्य को उसकी ज्ञान की पराकाष्ठा तक पहुँचाने के लिए जिस जुनून के साथ और जिस धैर्य के साथ आप सब लोग काम करते हैं, निश्चित हम आज के दिन में आपका अभिनंदन करना चाहते हैं। और शिक्षक ही ऐसा है जो सेवानिवृत्ति उसकी कभी नहीं होती, उसको शिक्षक माने गुरु, और गुरु माने जो ज्ञान को देता है, गुरु माने जो अंधकार को मिटाता है, गुरु माने जो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले चलने की क्षमता रखता है, लालसा रखता है, अभिप्सा रखता है, और जिसका मिशन है। और इसलिए हमारे यहाँ हमारे भारतीय संस्कृति में गुरु को कहा गया गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मे श्री गुरुवे नमः। माने ब्रह्मा विष्णु और महेश से भी श्रेष्ठतम माना है गुरु को, क्योंकि वो प्रकाश देने वाला, ज्ञान देने वाला ही गुरु है। और इतना ही नहीं तो उससे आगे जाकर के कहा कि गुरु गोविंद धो खड़े काके लागू पाए बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कि यदि यहाँ गुरु और भगवान के सामने खड़े हों तो पहले किसका वंदन करना है, यह हमारे भारतीय परंपरा में है। कि क्योंकि हम कहते हैं कि गुरु ने ही गोविंद को बताया है, वहां तक जाने का रास्ता गुरु से ही होकर के गुजरता है, इसलिए भगवान से पहले गुरु की ही वंदना हमारे यहाँ कही गई है। और इसलिए गुरु को हमेशा श्रेष्ठ दर्जा भारत की संस्कृति में, भारत के मनुष्यों में, भारत की इस आत्मा में बसा हुआ है। यदि मैं कहूँ कि व्यक्ति निर्माण से परिवार निर्माण, और परिवार निर्माण से राष्ट्र निर्माण, और राष्ट्र निर्माण से और विश्व का निर्माण, क्योंकि हम ही लोग हैं जिन्होंने पूरे विश्व को अपना परिवार माना है। अयम निजा परो व्यक्ति गणना लघु चित साम उदार चरता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम, पूरी वसुधा को कुटुम्ब मानने वाले हम ही लोग हैं। और इसलिए उस पूरे परिवार को, उस पूरी वसुधा के परिवार को, उस मानव मात्र को अच्छी जो भगवान की कृति है उसमें अच्छे विचार हो, उसका जीवन सुखी हो, और उस जीवन के लिए हमेशा प्रार्थना करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामया, कि धरती पर कोई भी प्राणी दुखी न हो, इतना बड़ा विचार रहा है। और ये विचार ये गुरु के द्वारा ही उस मानव में अंदर तक प्रेषित करने का ये जो मिशन रहा है, धैर्य पूर्वक जो जो एक अभियान रहा है शिक्षक का, संस्कारों को देने का, उसके मन के अंदर उन सभी चीजों को समाहित करने का, जिससे मानव से लेकर के और महान मानव तक की यात्रा को कर सके। और इसलिए इस देश को हमेशा से ही विश्व गुरु के रूप में कहा गया। डॉक्टर राधा कृष्णन जो राष्ट्रपति थे उन्होंने, और डॉक्टर एपीजी अब्दुल कलाम जो भारत रत्न हमारे राष्ट्रपति रहे हैं, उन्होंने हमेशा से ही अध्यापक के रूप में अपने को महसूस किया है और गौरव भी महसूस किया है। महर्षि अरविंद ने अपनी पुस्तक जिसका शीर्षक है महर्षि अरविंद के विचार में शिक्षक के संबंध में लिखा है कि अध्यापक राष्ट्र की संस्कृति के माली होते हैं, वे संस्कार की जड़ों में खाद देते हैं और अपने श्रम से उन्हें सींच सींच कर महाप्राण शक्तियां बनाते हैं। तो शिक्षक के रूप में यदि देखेंगे तो निश्चित उस दीपक के समान है जो अपनी ज्ञान ज्योति से दूसरों को ज्योतित कर रहा है। अगर किसी देश, कलाम साहब ने भी, आपको मालूम है कि उनके विचार, उन्होंने एक बार कहा था कि अगर किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त होना है और सुंदर दिमागों का देश बनाना है तो मुझे दृढ़ता से ये लगता है कि उसके लिए तीन प्रमुख लोग हैं, नंबर एक पिता, माता और शिक्षा, के तीन ही लोग हैं जो इसकी आधारशिला को खड़ा कर सकते हैं। इटली के एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यासकार ने भी कहा था कि शिक्षक उस मोमबत्ती की तरह है जो स्वयं जल जल कर दूसरों को प्रकाश देता है। तो मैं ये समझता हूं कि शिक्षकों के बारे में जितना भी कहा जाए वो कम ही कम है, वो हमारे ज्ञान के पुंज हैं, वो हमारे मार्गदर्शक हैं, वो भविष्य के निर्माता हैं। और इसलिए वो भारत जो ज्ञान के रूप में पूरी दुनिया में जिसने एक अपनी थाती स्थापित की थी, तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय जिस देश के अंदर थे, यहाँ पूरी दुनिया शिक्षा ग्रहण करने के लिए आती थी, आज फिर उसी भारत को ज्ञान की महाशक्ति बनाने का जो ये अभियान है, ये शिक्षकों से ही होकर के गुजरता है। और मुझे भरोसा है कि राष्ट्र निर्माण की इस आधारशिला पर खड़े होकर के शिक्षक उस राष्ट्र मंजिल का निर्माण करेंगे जिसकी चाह इस देश को है और जिसकी चाह पूरी दुनिया को है। मुझे याद आता है कि जब हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणा से इस देश में नई शिक्षा नीति के बारे में व्यापक विचार विमर्श पूरे देश और दुनिया में कर रहे थे, तब मुझे याद है कि भाई मृत्युंजय जी और बहन शिविका जी से मेरी मुलाकात हुई थी। और उस समय अपने नए भारत के लिए नई शिक्षा नीति के नाम से एक बृहद कार्यक्रम का आयोजन किया था और जिसमें मैं उपस्थित हुआ था। दिल्ली में वो अपने आप एक अद्भुत कार्यक्रम था और इसलिए मुझे लगता है कि नई शिक्षा नीति के निर्माण में ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय और इस पूरे परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। मुझे आज भी याद है कि आपने तब तमाम प्रकार के सुझाव दिए थे और जो 500 से भी अधिक श्रेष्ठतम विश्वविद्यालयों के कुलपति उस सम्मेलन में उपस्थित हुए थे, उनके जो सुझाव आए थे और जो आपने हमको सुझाव दिए वो हमने इस नई शिक्षा नीति यानी कि 2020 में समाहित किया, जिसमें आपने वैदिक ज्ञान और भारतीय संस्कृति को शिक्षा नीति में शामिल करने का सुझाव दिया था, सर्वांगीण विकास की बात की थी, इस भारत की शैक्षणिक प्रणाली में वैदिक ज्ञान परंपरा को और स्थापित करने की दिशा में भारत विश्वगुरु कैसे हो सकता है, वो तमाम सुझाव आए थे। नवाचार, गुणवत्ता परक, वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी युक्त नीति को ला करके और उनको अपने जीवन मूल्यों से जोड़ करके हम विश्वगुरु कैसे स्थापित हो सकते हैं, क्योंकि देश तो हमेशा ही विश्वगुरु रहा है और इसलिए हम इसको ताकि वो पूरे वैश्विक स्तर पर वो उसका सम्मान हो सके, वो अपना आधार वो नीचे गांव से लेकर के दुनिया के शिखर तक पहुंच सके। और इसलिए इस NEP में हमने तमाम प्रकार से ये सब चीजें समाहित की हैं। ये वैदिक ज्ञान चाहे वेद, पुराण, उपनिषद, योग, आयुर्वेद, ये तमाम जो कि आज जिसकी पूरी दुनिया को जरूरत है, जीवन मूल्यों से जोड़ करके उस ज्ञान और विज्ञान को नए अनुसंधान के साथ आगे लाने के लिए इस नई शिक्षा नीति में हमने तमाम चीजों को समावेश किया है। यही कारण है कि न केवल इस देश में बल्कि पूरी दुनिया में इसका बहुत व्यापक समर्थन मिला है इसको। और मैं समझता हूं कि इसमें भी मेरे अध्यापक गण की बहुत भूमिका रही है। आपके ही बल पर हम इस नई शिक्षा नीति जो आज पूरे विश्व के लिए एक महत्वपूर्ण बनी हुई है और जिसके लिए ये कहा गया है, विश्व के तमाम 100 से भी अधिक शीर्ष संस्थानों ने, विश्वविद्यालयों ने, जिसमें हार्वर्ड है, कैम्ब्रिज है, मिशिगन सहित तमाम दुनिया के शीर्षतम विश्वविद्यालयों ने कहा है ये विजनरी है, ये जो शिक्षा नीति है इसमें ये गेम चेंजर का काम करेगी, ये ऐतिहासिक है, परिवर्तनकारी है और अत्यंत व्यावहारिक है। और इन संस्थाओं ने कहा कि ये दूरदर्शिता से युक्त है, लचीलेपन से युक्त है, व्यावहारिक है, वैज्ञानिकता और शोध परक ये शिक्षा नीति है। और क्यों ना हो, क्योंकि हम लोगों ने ये जो शिक्षा नीति को, यदि मैं संक्षिप्त शब्दों में कहूं तो मेरे अध्यापकों ने और मेरे तमाम शिक्षाविदों ने और जो विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, ब्रह्म कुमारी इस मिशन से लेकर के तमाम लोगों ने जो आप लोगों ने सुझाव दिए, तो वो शिक्षा नीति, ये जो शिक्षा नीति है NEP 2020, ये नेशनल भी है, ये इंटरनेशनल भी है, ये इंटरैक्टिव भी है, ये इम्पैक्टफुल भी है, ये इनोवेटिव भी है, इंक्लूसिव भी है, बहुत खूबसूरत ये यदि देखें आप तो इक्विटी, क्वालिटी और एक्सेस की आधारशिला पर खड़ी है। और ये जहां टैलेंट की खोज करती है वहां क्यों खोज नहीं करती, उसका विस्तार भी करती है और उसको उत्कृष्ट कोटि के कंटेंट दे करके और उसको पेटेंट तक ले जाने के लिए कवायद करती है। अद्भुत शिक्षा नीति है और इसीलिए पूरे विश्व ने इसको स्वीकारा है। और यदि आप देखेंगे तो आत्मनिर्भर भारत के जो सूत्र है उसके लिए भी हम अपनी मातृभाषा में इस शिक्षा को देंगे, और जहां वो संस्कारों से युक्त होगा, अपने स्थानीय चीजों से वो ज्ञान से अभिज्ञ होगा, और कक्षा 6 से ही वोकेशनल एजुकेशन, और वो भी इंटर्नशिप के साथ ला रहे हैं, वो 12वीं तक जाते जाते बिल्कुल योद्धा बन जाएगा, वो किसी के पैरों पर खड़ा नहीं रहेगा। और जो उसके आसपास जो विभिन्न जो 135 करोड़ लोगों का देश है, और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इस बड़े लोकतांत्रिक देश का विभिन्न कोणों पर जो विभिन्न प्रकार की हमारी संपदाएं हैं, जो बिखरी पड़ी हैं, जो समस्याएं हैं, उनके समाधान के लिए स्थानीय आधार पर ये प्रतिभाएं उभरेंगी, और ये वोकेशनल एजुकेशन से लेकर के ये फिर स्टार्टअप तक जाएंगे, और मेक इंडिया तक ये इसका रास्ता होगा। और जो स्वर्णिम भारत है, जो स्वर्णिम भारत है, ऐसा भारत जो स्वच्छ भारत होगा, समझ भारत होगा, सशक्त भारत होगा, जो आत्मनिर्भर भारत होगा, श्रेष्ठ भारत होगा, एक भारत होगा, उस एक भारत श्रेष्ठ भारत और सशक्त भारत के लिए मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप, स्टैंडअप का जो रास्ता अपनाया है देश ने, और उसमें जो नई शिक्षा नीति जो आधारशिला बनेगी, और जिस शिक्षा नीति को क्रियान्वित करने के लिए जो मेरे शिक्षक बंधु हैं ये प्रथम पंक्ति में योद्धा के रूप में खड़े होकर के उसके क्रियान्वयन करेंगे, तो उस दिन देश पूरे विश्व के अंदर एक ऐसा स्वर्णिम भारत, एक नया भारत उभर करके आएगा, जिसकी चाह पूरी दुनिया को है। और मैंने तो ये ताकत देखी है अपने अध्यापक गण में, जब इस कोरोना काल के महामारी से हम लोग गुजर रहे थे, तो मैंने अद्भुत शक्ति देखी है, अद्भुत शक्ति देखी है शायद दुनिया का 33 करोड़ छात्रों को ऑनलाइन पर लाना, अमेरिका की लगभग जितनी आबादी नहीं है उतनी यहाँ के छात्र छात्राएं हैं, और घरों को ही स्कूलों में तब्दील कर वहां बच्चा पढ़ना शुरू कर देना, शायद इस देश के 33 करोड़ अभिभावकों ने सोचा भी नहीं होगा, उनके छात्रों के अभिभावकों ने कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन हमने दी, और हमने एक वर्ष भी खराब नहीं होने दिया बच्चे का, उसको अवसाद में नहीं जाने दिया। ये सारी शक्ति, ये निश्चित रूप में मैं बहुत ताकत के साथ, भरोसे के साथ, और जो मैंने महसूस किया, जो मैंने देखा, और जिसका क्रियान्वयन हुआ, वो मेरा केवल और केवल ये अध्यापक है जिसकी इच्छा शक्ति से, और हम इस काम को कर सके, अध्यापक और अभिभावक के बीच के समन्वय को और उसके छात्र के सर्वांगीण विकास को साथ रख करके जिस तरीके का वो अभियान था है, वो दुनिया में अपने आप बहुत अद्भुत है। इसलिए मैं अध्यापक उनको अभिनंदन करता हूँ। मुझे भरोसा है कि आज ब्रह्म कुमारी ये विश्वविद्यालय परिवार जो शिक्षक दिवस के रूप में ये इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, और जिसको मैं जानता हूँ कि जो हमेशा भारत की आत्मा और भारत की, जब भी मैं इस परिवार की गतिविधियों को देखता हूँ तब तब मुझे एक आशा का संचार होता है कि हाँ, जो माता भूमि पुत्र प्रतिभा, ये पूरी धरती मेरी माँ है और इस पूरी धरती का मैं पुत्र पुत्री हूँ। तो ऐसे समय में जबकि पूरी दुनिया तमाम परिस्थितियों से घिरी हुई है, तमाम संकटों से जूझ रही है, ऐसे वक्त पर वो ऐसे उस धरती के पुत्र पुत्रियां खड़ी होंगे और पूरी धरती के त्रास को हरने के लिए हर कदम पर संघर्ष करेंगे, एक नई राह का निर्माण करेंगे, और वो जो नए भारत के रूप में उदित होकर फिर विश्व के कल्याण के लिए आगे बढ़ेगा, ऐसा मेरा भरोसा है। मैं वैसे आपके बीच आता, लेकिन थोड़ा सा इस कोरोना के महामारी का शिकार मैं भी बना और बहुत संकट से होकर के गुजरना पड़ा। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, लेकिन इस परिवार के इस मिशन के लिए मैं बहुत सारी शुभकामना देना चाहता हूँ, और जो अध्यापक को आज इस अध्यापक दिवस के अवसर पर आपको अभिनंदन करना चाहता हूँ, सारे अध्यापक को जो आपने दुख दर्द को भूल करके और राष्ट्र निर्माण की दिशा में उस बच्चे के निर्माण के लिए, छात्र छात्राओं के निर्माण के लिए अपने को पूरा पूरा का पूरा समर्पित होकर के एक मिशन के रूप में काम करते हैं। ऐसे योद्धाओं को जिन्होंने कोरोना काल में भी पहली पंक्ति में खड़े होकर के और इस पूरे राष्ट्र के भविष्य को बचाया है, एक नया रास्ता दिया है, ऐसे सभी अध्यापकों का मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। इस अवसर पर आपको शुभकामना देना चाहता हूँ और मैं विशेष करके इस परिवार को और कुलाधिपति जी को और शिवानी जी को, पूरे परिवार को, दीदी लोगों को, सभी को मैं इस अवसर पर बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
थैंक यू सो मच सर फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड मोटिवेशनल वर्ड्स। और अब आप सभी के बीच में लेके आ रहे हैं हम एक शॉर्ट वीडियो जो हमारे प्यारे प्यारे बच्चों ने इन दिनों में राजयोगा के द्वारा उसको अपनाया है। तो आइए मिलकर देखते हैं ये शॉर्ट वीडियो जो हमारे प्यारे प्यारे बच्चों के द्वारा आपके लिए बनाई गई है।
शांति। आप सभी को जानकर के बहुत खुशी होगी, हमने एक जून मास में एक समर कैंप ऑर्गेनाइज किया था बच्चों के लिए और उस समर कैंप में बहुत सारे करीब 2000 बच्चे उसमें जुड़े। 9 साल से लेकर के 15 साल के बच्चों के लिए हमने ये समर कैंप ऑर्गेनाइज किया था और उस समर कैंप में बच्चों को इतना अच्छा अनुभव हुआ, इतने कॉम्पिटिशन्स बच्चों के ऑर्गेनाइज हुए, क्लासेस हुए, स्पिरिचुअल क्लासेस और एक्टिविटीज, वर्कशॉप्स, फन गेम्स, हमने पूरा दिन बच्चे एंगेज उसमें रहते थे क्योंकि बच्चों की हॉलीडेज थी तो इतना उन्होंने एंजॉय किया जैसे कि वो एक पैंडेमिक से बाहर आकर के ऐसा लगता था जैसे अपने घर में ही है लेकिन यहाँ के एनवायरमेंट में, स्पिरिचुअल एनवायरमेंट में एंजॉय कर रहे हैं। तो सभी बच्चों ने हमसे रिक्वेस्ट किया कि हम इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करें, लेकिन कंटिन्यू करना हमारे लिए डेली कंटिन्यू करना पॉसिबल नहीं था तो इसलिए हमने सोचा कि हम वीकली वेबिनार करते हैं। एवरी सैटरडे हम लोग 6 to 8 बच्चों के लिए ये प्रोग्राम करते हैं। तो इसमें हमने अभी कोई कंडीशन नहीं रखा है कि कौन से बच्चे ज्वाइन करें, कोई भी एज ग्रुप के बच्चे इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। एवरी सैटरडे 6 to 8 रखा जाता है जिसमें एक स्पिरिचुअल क्लास होती है बच्चों की और उसमें फन गेम्स होते हैं, जीके क्विज होता है, योगा सेशन, एक्सरसाइजेस होती हैं बच्चों की और एक्टिविटीज उनको हम कराते हैं और हर वीक का एक टास्क हम बच्चों को देते हैं कि आपको कोई वीडियो बनाना है या कोई पोस्टर बनाना है या कोई भी एक्टिविटी हम बच्चों को देते हैं और सभी बच्चे उसमें बहुत खुशी से भाग लेते हैं। कुछ बच्चे हमारे दिखाई भी दे रहे हैं जो जुड़े हुए हैं उसी प्रोग्राम के कारण से। तो अगर आप भी अपने बच्चों को उसमें ज्वाइन कराना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू। अभी हम कंटिन्यू कर सकते हैं प्रीति बहन।
ओके, थैंक यू सो मच दीदी। बिल्कुल, हमारे सारे जितने भी टीचर्स, पेरेंट्स, प्रिंसिपल जुड़े हैं वो जरूर अपने बच्चों को इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तो अब आप सभी का जो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जिनका, उनका स्वागत करने से पहले हम फिर से आपको थोड़ा सा अपडेट देते हैं आज के सेशंस के बारे में। थोड़ा सा हम इवनिंग के सेशन के बारे में आपको और बताना चाहते हैं कि इवनिंग का सेशन 5 to 7 रहेगा। टॉक बिटवीन श्री शिव खेरा जी, मोटिवेशनल स्पीकर, ऑथर एंड लाइफ कोच, एंड सिस्टर बी के जीना, डायरेक्टर ऑफ मेडिटेशन म्यूजियम, वॉशिंगटन डीसी, यूएसए। उनके साथ ही थॉट लैब के बारे में हमारे बीके प्रोफेसर मुकेश भाई जी, जो हमारे साथ जयपुर से हैं, वो आपको डिटेल शेयर करेंगे। उससे पहले हम बताना चाहते हैं कि ऑल द पार्टिसिपेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू ज्वाइन द सेशन 10 मिनट्स बिफोर इट स्टार्ट. प्लीज कीप योरसेल्फ म्यूटेड. द होस्ट विल अनम्यूट यू व्हेन इट्स रिक्वायर्ड. देयर विल बी अ क्विज. आज अभी मॉर्निंग सेशन के बाद, हमारा मिस्टर शिवानी के सेशन के बाद एक क्विज होगा, और उस क्विज में द टॉप 3 विनर्स विल बी अवॉर्डेड विद द बुक्स बाय श्री शिव खेरा जी इन द इवनिंग सेशन. सो ऑल आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड बोथ द सेशंस. Translations are available in Hindi and English. You can choose interpretation. Our Raj Yoga meditation course will start from 8th September. Those who want to join the course, please click on the link in the chat box to join our WhatsApp group. We also have a counseling session today in the evening from 6 p.m. to 7 p.m. So all are requested to attend the same. So now, without taking much of your time, let's welcome our favorite motivational speaker, Sister Shivani, who has benefited many people around the world by sharing her knowledge on living values, self-management, inner powers, harmony in relationship, karma theory, and art of living. Aur unki awakening with Brahma Kumari's ki series se to hum sab jude hi hain. So now, let's welcome wholeheartedly our dear BK Sister Shivani. Om Shanti Didi.
Om Shanti. Thank you so much. Om Shanti. हम सब इकट्ठे मिलकर एक मिनट साइलेंस में बैठेंगे. इतनी अच्छी अच्छी गहरी गहरी जीवन बदलने वाली बातें हमने सुनी हैं, और ऐसी ज्ञान की बातें, ऐसे परमात्मा के महावाक्य जो सिर्फ हमारा जीवन नहीं, हमारे द्वारा अनेकों का जीवन बदल देंगे. तो एक मिनट साइलेंस में अपने लिए चूज कीजिए कि मैंने कौन सी एक बात आज पकड़ी है जिसको मुझे आज से ही, अभी से ही इम्प्लीमेंट करना है. सिलेक्ट वन पॉइंट, एनी वन पॉइंट. व्हाट एम आई चूजिंग टुडे? क्या लेना है आज से? और अगर कोई शेयर करना चाहे तो वो चैट पे डाल सकते हैं कि हमने मॉर्निंग से ये वाली एक पॉइंट उठाई है कि मुझे आज से ये इम्प्लीमेंट करना है. नहीं तो हम सब ऐसे मिलते हैं, ज्ञान की बातें होती हैं, अच्छा भी लगता है, बट फिर हम वापस वैसे चले जाते हैं. वो नहीं होना चाहिए आज. नो एंगर एंड इम्पेशेंट एक्ट, वेरी गुड. एंगर मैनेजमेंट, वेरी गुड. रेगुलर मेडिटेशन, देखा कितनी अच्छी अच्छी बातें निकल के आ रही है. एक्यूरेसी, आई एम अ पीसफुल बींग, वेरी नाइस. नो आर्ग्यूमेंट, पॉजिटिविटी, वेरी नाइस. अब देखो, टीचर्स और पेरेंट्स ऐसे बन जाएंगे तो बच्चे कैसे बन जाएंगे? डेली मुरली, संपूर्ण समर्पण. Want control myself, very sweet. Exercise, stress management, being teacher for the self. I am a peaceful being, very good. अब जो चीज चैट पे लिखी है ना, इसको अपने पास भी लिख के रखना है कि मैंने आज ये डिसाइड किया है कि मैंने आज से ये करना है ना? क्यों करना है? हम सबके अलग अलग रोल्स होते हैं, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं. अब सपोज कोई आईटी सेक्टर में है, अब सपोज मैं यहाँ बैठी हूँ मेरे कंप्यूटर के साथ, और सपोज मेरी सेवा है सारा दिन कंप्यूटर पे काम करने की, तो क्या होता है, इंटरेक्शन किसका और किसका है? मेरा और इस कंप्यूटर का, इस लैपटॉप का. तो मेरी जो स्थिति है, माय स्टेट ऑफ माइंड, उसका इम्पैक्ट सिर्फ इस लैपटॉप के ऊपर ही आएगा, क्योंकि मेरे संग में सिर्फ लैपटॉप ही है सारा दिन पे. तो फिर माई स्टेट ऑफ माइंड विल अफेक्ट मी, and my state of mind will only affect this laptop. And of course, it radiates into the environment. लेकिन मेरा रोल ही सारा दिन लैपटॉप के साथ बैठने का है. तो अलग अलग रोल होते हैं. कोई डॉक्टर होता है, उसका सारा दिन क्या रोल है? उसका रोल है जो दर्द में आते हैं, दुख में आते हैं, उनकी हीलिंग करना. अब आप सिर्फ विजुअलाइज कीजिए, ये पेशेंट है, सिर्फ शरीर से बीमार नहीं है, मन से अशांत है, मन से परेशान है, मन से दुखी है. फिर उसके साथ दो फैमिली मेंबर आते हैं, वो भी परेशान है, और यहाँ डॉक्टर है, वो खुद भी परेशान है, वो खुद अपनी लाइफ में किसी बात से स्ट्रेस्ड है, बहुत डिस्टर्ब्ड है. अब जब वो डॉक्टर इस पेशेंट से बात कर रहे होंगे, प्रिस्क्रिप्शन पे ठीक से एक्यूरेट इलाज लिख रहे होंगे, लेकिन उनके जो स्ट्रेस की वाइब्रेशन है, एनर्जी है, उतनी देर में वो वाइब्रेशन इस पेशेंट की तरफ चली जाती है और जो पेशेंट का परेशानी और दुख की वाइब्रेशन है वो भी इधर चली जाती है। सो एट द एंड ऑफ अ 10 मिनट कंसल्टेशन उस पेशेंट को इलाज तो एक्यूरेट मिल जाता है, लेकिन उसका स्टेट ऑफ माइंड और दर्द में आ जाता है, क्योंकि जिनसे उनका इंटरेक्शन हुआ 10 मिनट्स, दे वर द बेस्ट डॉक्टर, लेकिन वो माइंड में थोड़े से परेशान थे। तो इलाज फिजिकल हेल्थ का तो हो गया, लेकिन इमोशनली तो और ही स्ट्रेस्ड होकर आ गए, और ही कंफ्यूज होकर आ गए कि क्या बोला डॉक्टर ने, इतनी जल्दी जल्दी बोला, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया, पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, सब कहते हैं डॉक्टर बहुत अच्छा है, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मन तो फिर भी सुकून से नहीं आया। और कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं, आप चेक करना कि कभी आप ऐसे डॉक्टर से मिले हैं, कि कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं कि आप उनसे मिलते हैं, वो इलाज लिखते हैं, अभी आपने दवा खाई नहीं होती है, इलाज अभी शुरू नहीं हुआ होता है, लेकिन वो डॉक्टर से मिलके इतनी अच्छी एनर्जी मिलती है, इतनी अच्छी फीलिंग आती है, हम बाहर आके कहते हैं ओहो आई एम ऑलरेडी फीलिंग बेटर, अभी तो कोई दवा खाई भी नहीं है, तो हम बोलते हैं आई एम ऑलरेडी फीलिंग वेरी गुड आफ्टर मीटिंग दिस डॉक्टर। सो व्हाट वाज द फील गुड फैक्टर, क्या फीलिंग गुड आई उस डॉक्टर से मिलके, उनकी स्टेट ऑफ माइंड, उनकी वाइब्रेशंस, उनका काम, उनकी पॉजिटिविटी, उनकी वो प्योरिटी, उसका इफेक्ट पेशेंट पर आता है और पेशेंट इलाज से पहले ही अच्छा फील करना शुरू कर देता है। तो जब भी दो लोग इंटरैक्ट करेंगे, इट्स नॉट जस्ट व्हाट दे डू कि कोई इलाज कर रहा है, आप पढ़ा रहे हैं, दिस इज व्हाट वी डू, लेकिन हम सिर्फ डूइंग नहीं है, हमारी जो स्थिति है वो भी उस समय उनको रेडिएट हो रही है। अब डॉक्टर तो कितने लोगों से मिलते हैं, सिर्फ 2 या 3, लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेक्शन किसका होता है, और वो भी ऐसे माइंड्स के साथ जिनके ऊपर इम्पैक्ट और भी ज्यादा पड़ता है, वो होता है सब टीचर्स का, सब टीचर्स का। तो टीचर हर सेक्शन में, हर क्लास में, हर 40 मिनट के बाद कम से कम 30-40 माइंड्स के ऊपर इम्पैक्ट कर रहे हैं, राइट? भले हम पढ़ा रहे हैं मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिस्ट्री, इंग्लिश लिटरेचर, स्पोर्ट्स, जिम, योगा, हम पढ़ा रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स, हम पढ़ा रहे हैं म्यूजिक, डांस, आर्ट, क्राफ्ट, वो दैट इज आर डूइंग, जैसे वो डॉक्टर के वो डूइंग था इलाज। लेकिन जो भी हम पढ़ा रहे हैं उस टाइम पे हमारी जो ऑरा है, हमारी जो वाइब्रेशन है, हमारी जो स्टेट ऑफ माइंड है, वो एनर्जी की तरह उन बच्चों की तरफ जा रही है। ये हमें भी नहीं दिखाई देती, उन्हें भी नहीं दिखाई देती, लेकिन एनर्जी तो सारी उनके ऊपर रेडिएट हो रही है। अब आजकल हम कहते हैं आजकल के बच्चे देखो कैसे हो गए हैं, छोटी छोटी बातों में रिएक्ट करते हैं, पेरेंट्स तो हैं वो कहते हैं बच्चे आजकल कहना ही नहीं मानते हैं। आप जो भी पेरेंट्स हैं, अगर बच्चे आजकल कहना नहीं मानते, उनको बोलते हैं टीवी के साथ खाना नहीं खाओ, कहते हम बोल तो देंगे उनको, लेकिन बच्चे आजकल हमारा कहाँ कहना मानते हैं, दिस इज बिकम लाइक अ स्टैंडर्ड लाइन कि बच्चे हमारा कहना नहीं मानते। जब आप और मैं छोटे थे तो हम कहते थे मम्मी पापा ने बोला है तो करना ही है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता था उसमें कि मम्मी पापा ने जो बोला वो करना या नहीं करना है, तो हम कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो गए। ये क्यों हुआ, क्यों बच्चे ऐसे हो रहे हैं कि विल पावर कम है, डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं, स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, एग्जाम से पहले एंग्जाइटी हो जाती है? तो कोई भी टीचर से अगर हम पूछते हैं या कोई भी पेरेंट से अगर हम पूछते हैं, क्योंकि आप टीचर भी हैं और आप में से मेजोरिटी पेरेंट्स भी होंगे, तो किसी से भी पूछो कि आजकल बच्चे ऐसे क्यों हो गए हैं, तो कहते क्या करें जी, आजकल बड़ा कॉम्पिटिशन है, आजकल बड़ा पढ़ाई का प्रेशर है। और ये बोलकर हम सारा ब्लेम पढ़ाई पर, एजुकेशन पर और उस सिस्टम पर डाल देते हैं और हम कहते हैं इसलिए हमारे बच्चे ऐसे हो गए हैं। दैट्स नॉट ट्रू, ये सच नहीं है। लेट्स लुक एट द मेन कॉज कि स्पिरिचुअल पावर जब कम होती है हमारी, इसको यहाँ पर विजुअलाइज करना, एक बैटरी है यहाँ पर, इसको विजुअलाइज करना, यहाँ पे एक बैटरी बनी हुई है, जैसे फोन की बैटरी में 4 लाइन होती है ना, तो हमें दिखता है फुल्ली चार्ज्ड है, आधा चार्ज्ड है या बिल्कुल खत्म होने पर आया है, तो हम उसको चार्ज कर लेते हैं, कहते चार्जर दो, मेरा फोन डिस्चार्ज होने वाला है, क्योंकि वो बैटरी दिखाई देती है। उसी तरह यहाँ पे एक बैटरी है जिसको हम कहेंगे सोल पावर, आत्मा की शक्ति, इनर पावर, जिसको कभी कभी बच्चे कहते हैं विल पावर, वो भी आत्मा की शक्ति है, तो वो यहाँ पे बैटरी है। अब हमारे को दिखाई नहीं देती कि ये बैटरी फुल है, 50% है, 10% है, ये कितने परसेंटेज पे बैटरी है हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन ये बैटरी हमें हमारे बिहेवियर में दिखाई दे सकती है। अगर हमें गुस्सा ज्यादा आता है, हम बातों में रिएक्ट कर देते हैं, हम एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, हम टॉलरेट नहीं करते, हम फॉरगिव नहीं कर पाते हैं, हम किसी की बात को भूल नहीं पाते हैं, हम अपने आप को ही ज्यादा अच्छा समझते हैं, हमें दूसरों से जेलेसी होती है, हम ग्रैटिट्यूड कम, कंप्लेनिंग ज्यादा करते हैं। कुछ लोग होते हैं उनके पास बहुत थोड़ी फैसिलिटी होती है लेकिन वो बहुत ग्रैटिट्यूड करते हैं, शुक्राना भगवान का, शुक्रिया परमात्मा मेरे पास सब कुछ है। और कुछ लोग होते हैं उनके पास सब कुछ होता है फिर भी कहते हैं ये कम है, ये कम है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। सो व्हाट इज माय पर्सनालिटी, एम आई अ ग्रैटिट्यूड पर्सन, कंटेंटेड, और एम आई कंप्लेनिंग, डिससैटिस्फाइड। तो ये डिसाइड करेगा कि ये बैटरी कहां पर पहुंची हुई है। तो हमें ये चेकिंग करनी है कि आजकल जो बच्चे हैं उनकी बैटरी आपको क्या लगता है कि कहां पर है, और वो इंटेलेक्ट से नहीं डिसाइड होगा। ये नहीं सोचना आजकल के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, दैट इज अ डिफरेंट क्वोशेंट, दैट इज एन इंटेलेक्चुअल क्वोशेंट। तो आजकल के बच्चों का आईक्यू बहुत हाई है, वो कई बार इतना सब कुछ स्टडी करके आ जाते हैं, इंटरनेट से इतना का सब कुछ सर्व करके आ जाते हैं, तो कई बार वो आपको भी आपके क्लास में कुछ नई बात बता देंगे जो आपको नहीं पता होगी, एंड विच इज एब्सोल्यूटली फाइन। उसमें क्या रॉन्ग है, हमें तो बोलना चाहिए थैंक यू फॉर शेयरिंग, मुझे नहीं पता था, अच्छा वो आपने आके बता दिया। तो हम स्टूडेंट्स का भी शुक्रिया कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन अक्वायर करना कोई बड़ी बात नहीं होती है, इन्फॉर्मेशन चारों तरफ है, हमें सिर्फ उसको अक्वायर करना है, तो वो है आईक्यू। लेकिन हमें जो अब चेक करना है वो है ईक्यू, इमोशनल कोशेंट कैसा है हमारा। और उसके लिए पहले हमें ये चेक करना है आजकल के बच्चों का इमोशनल कोशेंट कैसा है। ये 1.5 साल के अंदर जब ये सारी सिचुएशंस हुई तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हम कहते हैं फिजिकल हेल्थ पर इम्पैक्ट पड़ा। अगर हम काउंट करें कि देश में कितने लोगों को कोविड हुआ, ठीक है, अभी आप सिर्फ चेक करिएगा कि देश में कितने लोगों को कोविड हुआ, वो फिगर तो हमें पता है, कुछ परसेंटेज है ऑफ द होल पॉपुलेशन। लेकिन अगर हम ये चेक करें कि देश में कितने लोगों को स्ट्रेस हुआ इस 1.5 साल के अंदर, अगर हम ये चेक करें कि इस 1.5 साल के अंदर कितने लोगों को फियर हुआ, डर लगा, ये ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए, मुझे ना हो जाए, मेरे बच्चे को ना हो जाए, मेरे घर वालों को ना हो जाए, मैं बाहर कैसे जाऊं, मैं ये कैसे करूं, फियर हुआ। और अगर हम चेक करें कि किसी को एंग्जाइटी हुए, तो आपको क्या लगता है कि कोविड का परसेंटेज ज्यादा है या स्ट्रेस और फियर का परसेंटेज ज्यादा है, ये चेकिंग करनी है। लेकिन हम सबका फोकस कोविड पे था क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अ फिजिकल हेल्थ इशू, तो हम ये इमोशनल हेल्थ की चीजों को इग्नोर कर देते हैं हम, और हमने तो ये कहना शुरू कर दिया फियर एंड एंग्जाइटी इज नॉर्मल। हम कहते हैं फियर एंड एंग्जाइटी इज नॉर्मल। अब आप सोचो, आप एक बच्चे को बोलो फियर एंड एंग्जाइटी इज नॉर्मल, तो फिर तो वो नॉर्मल की तरह क्रिएट करेगा उस फियर एंड एंग्जाइटी को। तो फियर एंड एंग्जाइटी इज नॉर्मल मतलब इमोशनल क्वोशेंट इज लो। आईक्यू हाई कैसे होता है वो आपको पता है, अब आप चेक कीजिएगा अभी कि ईक्यू हाई किसको कहेंगे। क्योंकि अब जो आप बोल रहे हैं ना फ्यूचर जेनरेशन, मतलब जो प्रेजेंट जेनरेशन है, इसके अंदर हमें जो अब प्रायोरिटाइज करना होगा, एजुकेशन तो हमारी प्रायोरिटी है ही, लेकिन एजुकेशन, आज सुबह की क्लास में मुझे एक बहन आकर मिली, कहते मेरा बेटा 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जाम के ईयर में है। आई सेड हां जी। कहती पता नहीं क्या हो गया है, उसने पढ़ना बंद कर दिया। ये आज सवेरे 9 बजे की बात है। शी सेड उसने पढ़ना बंद कर दिया है। आई सेड क्या हुआ है। शी सेड ही इज जस्ट शट डाउन ऑल द बुक्स एंड ही इज विद गैजेट्स। कहते मुझे मेरे से नहीं हो रहा, स्विच्ड ऑफ, यहां से स्विच ऑफ हो जाता बच्चा, मुझसे नहीं हो रहा। एंड शी सेड मैं कितना भी बोल लूं उस बात का कोई असर नहीं हो रहा। इट्स नॉट कि कम पढ़ रहा है, इट्स जस्ट दैट उसने बंद कर दिया है, बंद कर दिया है। तो ये होता है कि जो माइंड होता है वो डिनायल मोड में चला जाता है कि ये मेरे से होने नहीं वाला, तो वी जस्ट गिव अप, मुझे नहीं करना ये करके। इतने सालों की मेहनत और लास्ट डे पर जब हम लास्ट ईयर के अंदर लास्ट कुछ महीने में पहुंचे, अगर ऐसा कोई शटडाउन हो जाता है तो कैसे उसको हैंडल करेंगे, कैसे करेंगे। तो उसके लिए जैसे जैसे बच्चा पढ़ रहा है 12 साल 12वीं तक पहुंचने के लिए, वो 12 साल में उसका एजुकेशन हम पूरा करते हैं, लेकिन उस 12 साल में उसको हमें इमोशनली भी स्ट्रांग बनाना होगा, ताकि जब वो 10th के बोर्ड के एग्जाम से पहले आएगा, या वो 12th के बोर्ड के एग्जाम से पहले आएगा, या वो किसी एंट्रेंस एग्जाम से पहले आएगा, या वो जीवन की किसी भी मुश्किल परिस्थिति से पहले आएगा, वो स्ट्रांग है। इसके लिए कोई और स्कूल नहीं होने वाला है, इसके लिए कोई और कॉलेज नहीं होने वाला है, बच्चे कहीं और नहीं जाएंगे ये सीखने के लिए। दिस हैज टू नाउ बी अ पार्ट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। अब इसमें ये नहीं है कि हमने कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करना है, हमारा तो पहले सिलेबस पूरा नहीं हुआ इस साल, तो वैसे वी हैव सो मच टू कैच अप। लेकिन इस साल हमारा फोकस, और इस साल से हमेशा, क्योंकि इस साल में जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी बिजनेस हाउसेस हैं, इंडस्ट्रीज हैं, हर एक के साथ जब वेबिनार हुए या बात हुई, तो हर एक ने एक ही चीज की, अब हमारी प्रायोरिटी, जब हम लोगों को हायर करेंगे, हमारी प्रायोरिटी होगी इमोशनल कोशेंट। अब वो बोल रहे हैं, अब हम नहीं बोल रहे, अब वो बोल रहे हैं। पहले हम उनके यहाँ वर्कशॉप कराने जाते थे, हम बोलते थे और वो कहते थे हाँ हाँ इमोशनल कोशेंट इम्पोर्टेंट है, और फिर वापस वैसे ही काम करते थे जैसे करते थे। अब वो बोल रहे हैं इमोशनल कोशेंट हमारी प्रायोरिटी है। अब तो आप ये समझिए अब कि अब से जो बच्चे जाएंगे बाहर, और जब उनको कैंपस इंटरव्यू या कोई भी सिलेक्शन के लिए देखा जाएगा, उनके सिर्फ मार्क्स, उनकी सिर्फ परफॉर्मेंस, सिर्फ ये फैक्टर नहीं होगा, नहीं होगा, उनका इमोशनल कोशेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। और उसका रीजन ये है, पिछले 1.5 साल के अंदर और पहले भी हमारे मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत हाई चले गए हैं। कोविड के फर्स्ट मंथ के अंदर, लॉकडाउन के फर्स्ट वेव के फर्स्ट लॉकडाउन के अंदर, 1.5 महीने के अंदर 30% राइज हुआ इंडिया के अंदर ऑफ डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी अटैक। एक देश में 30% राइज 1 महीने के अंदर। So that is the reason. तो obviously अब ये concern हो जाएगा कि जिनको हम हायर करेंगे, जिनको हम ट्रेन करेंगे, अब हमने उनको सब सिखा दिया, ट्रेन कर दिया, लेकिन वो उनका माइंड ही डिस्टर्ब हो गया जब कोई परिस्थिति आ गई, तो फिर हमारी ट्रेनिंग क्या करेगी, हमारी ट्रेनिंग करेगी क्या? So this is now going to become a priority. ये तो पक्की बात होनी ही है, this will become a priority. तो चाहे आप उसको पर्सनल बेनिफिट के लिए देखिए कि इमोशनल कोशेंट इम्पोर्टेंट है, और नहीं तो प्रोफेशनल बेनिफिट के लिए देखिए कि प्रोफेशनली इमोशनल कोशेंट हाई चाहिए होगा बच्चों का। अब बच्चों का इमोशनल कोशेंट हाई बनाएंगे कैसे, उसके लिए कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। भले हम लाइफ स्किल्स का सब्जेक्ट करते हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन एक सब्जेक्ट से नहीं बनती है इमोशनल हेल्थ। इमोशनल हेल्थ बनती है उस एनर्जी से, उस वाइब्रेशन से, जिस संग के अंदर बच्चा पलता, पढ़ता और बड़ा होता है, उस संग की एनर्जी से उसकी इमोशनल हेल्थ बनती है। तो जैसे डॉक्टर की वाइब्रेशन पेशेंट पर असर कर रही थी, इसी तरह आपकी वाइब्रेशन आपके बच्चों पर और आपके हर स्टूडेंट पर पड़ती है। यहां अब 30 मिनट्स का लेक्चर है, आप भले कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, लेकिन 30 मिनट्स आपकी वाइब्रेशन उस पूरी क्लास के ऊपर रेडिएट कर रहे हैं। ये आपको हमेशा देखना होगा, ये सीन विजुअलाइज करना है कि मेरी एनर्जी इस सारे 30 माइंड्स के ऊपर जा रही है। इवन अगर हम अपने स्कूल को याद करें, और हम याद करें कि कौन सी टीचर्स हमारे लिए सबसे स्पेशल थी, पढ़ाते तो सारे ही अच्छे थे, लेकिन हम कहते वो वाली टीचर बड़ी स्पेशल लगती है, वो वाली टीचर में क्या खास बात थी, क्यों वो स्टैंड आउट हो रही है, क्यों हमें वो ज्यादा याद है आज भी 20 साल बाद या 30 साल बाद? द वे दे मेड अस फील कि हम उनकी प्रेजेंस में, हम उनकी एनर्जी में कितना कंफर्टेबल फील करते, कितना पावरफुल फील करते, कैसे हम लो होते तो भी वो हमें ऊपर उठा लेते, मोटिवेट कर लेते। इट इज हु टच्ड माई इमोशनल हेल्थ। पढ़ाई तो अगर हमें नहीं भी कोई ठीक से पढ़ाए, हमें घर पे कोई पढ़ा देता है, हमें कोई और तरह से पढ़ाई मिल जाए, लेकिन टीचर से जो हमें एनर्जी मिलती है, जो पावर मिलती है, दैट्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर अ चाइल्ड्स लाइफ। तो अब हमारी डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सब्जेक्ट भी पढ़ाएंगे, वो तो हमें आता ही है, वो तो ईजी है, आपने इतने साल से पढ़ा रहे हैं, आप नींद में भी पढ़ा सकते हैं वो सब्जेक्ट, वो तो फिटेड ही हो गया ना यहाँ पे, वो तो सिर्फ प्ले बटन दबाना होता है यहाँ पे, यहाँ तो सब रिकॉर्ड हो जाता है हर चैप्टर। लेकिन अब हमारी ये जिम्मेवारी है कि हमारी वाइब्रेशन कैसी है, हमारी स्टेट ऑफ माइंड कैसी है, तो उसका फर्स्ट बेनिफिट तो हमें मिलेगा और सेकेंड उसका इम्पैक्ट सबके ऊपर पड़ने वाला है कि हमारी वाइब्रेशन कैसी है, हमारी एनर्जी फील्ड कैसी है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम ही कहें कि स्ट्रेस हो रहा है, हम ही कहें चिंता चल रही है, हम ही कहें मुझे गुस्सा बहुत आता है, तो हमारी ऑरा कैसी होगी, हमारी ऑरा कैसी होगी। जैसे आप में से सुबह अगर कोई परफ्यूम यूज करता है, अगर आप परफ्यूम यूज करते हैं, ठीक है, अब आपने सुबह सुबह तैयार हुए, स्कूल जाने से पहले आपने परफ्यूम लगा लिया, अब आप क्लास में आ गए, मैं आपकी क्लास की स्टूडेंट हूँ, आप आगे खड़े हुए हैं, लेकिन आप परफ्यूम लगा के आए हैं, तो आपकी परफ्यूम की स्मेल मुझे मिलेगी ना पूरा 30 मिनट्स उस सेशन के दौरान, मिलेगी कि नहीं? बिकॉज यू हैव चोजन टू वेयर दैट परफ्यूम। तो जो परफ्यूम आपने चूज किया उसकी फ्रेग्रेंस वो पूरे क्लास को 30 मिनट्स मिलने वाली है। फिर आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, उस क्लास को भी 30 मिनट्स वो फ्रेग्रेंस मिलने वाली है। फिर आप स्टाफ रूम में जाएंगे, सारी टीचर्स को भी वो फ्रेग्रेंस 30 मिनट्स 1 आवर मिलने वाले है। ऐसे ही जो फ्रेग्रेंस सबको मिलती है हमारे से, वो है हमारी वाइब्रेशन, हमारी वाइब्रेशन। जिस दिन आपका मूड बहुत पीसफुल होता है, बहुत पावरफुल होता है, आप चलते फिरते रेडिएटर ऑफ पीस होते हैं, आपसे मिलकर लोगों को शांति एक्सपीरियंस हो जाएगी, आपसे मिलकर लोग कहेंगे हाँ मैं बड़ा मन परेशान था, आपसे मिलकर अभी मेरा मन ठीक हो गया। कैसे ठीक हो गया, मैंने तो कुछ नहीं किया। यू वॉन अ फ्रेग्रेंस ऑफ पीस, आपने शांति का परफ्यूम लगाया हुआ आज, तो आपके अंग संग में, आपकी एनर्जी फील्ड में जो आएगा उसको बड़ी अच्छी फीलिंग आएगी। और फिर आप चलते चलते क्लास में पहुंच गए एंड आपका परफ्यूम शांति का है। नाउ सी व्हाट विल हैपन, आप सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ाएंगे या साइंस पढ़ाएंगे, लेकिन 30 मिनट्स यू आर रेडिएटिंग पीस एंड पावर टू द होल क्लास। मतलब चार्ज्ड बैटरी, बाकी सारी बैटरीज को क्या कर रही है उस 30 मिनट्स के अंदर, वो बच्चों की सारी बैटरीज को भी चार्ज कर रही है। ये ना बच्चों को पता है, ये ना टीचर को पता है, लेकिन ये चार्जिंग हो रही है, ये चार्जिंग हो रही है। लेकिन अगर गलती से भी इसका ऑपोजिट हो गया कि टीचर बड़ी परेशान परेशान से भागते 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 ये करते वे कुछ भी नहीं ठीक हो रहा, अच्छा चल ठीक है, क्लास में पहुंच गए। पहुंचने के बाद सब्जेक्ट पढ़ाना तो बहुत इजी है, आपको पता है हम बहुत कुछ और सोचते हुए भी यहां से सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं ना, हम यहाँ पे ये याद करते हुए भी यहां से तो पूरा पढ़ा के आ जाएंगे। बिकॉज इट्स रिकॉर्डेड, इट्स नॉट फ्रेश, इट्स लाइक ड्राइविंग फ्रॉम होम टू स्कूल। अगर रोज वही रास्ते जाते हैं, रोज वही रास्ते जाते हैं, तो आप यहां से गाड़ी में बैठे और आप आधे घंटे के बाद घर पहुंच जाएंगे और आपको रास्ते में कुछ भी नहीं दिखाई देगा। आप अपना सोचते 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 अच्छा पहुंच गए, हाँ पहुंच गए, गाड़ी कौन चला रहा था, क्योंकि हम तो कुछ और सोच रहे थे। गाड़ी चला रहा था हमारा संस्कार, जिसको गाड़ी चलाना आता है, और हमारा मन कुछ कुछ और सोच रहा था। इसी तरह पढ़ाना हमारा संस्कार है, और क्योंकि हम वही सब्जेक्ट वही चैप्टर पढ़ाते हैं, वो हमारे संस्कार के अंदर फिटेड हो जाता है। तो हमारा माइंड कुछ और सोचते सोचते भी पढ़ा सकता है, वो भी पढ़ा सकता है, या डेफिनेटली हमारा माइंड दुखी होते हुए भी पढ़ा सकता है। तो हमारी वाइब्रेशन अगर थोड़ी सी डिप्लीटेड होगी तो 30 मिनट्स हमारी बैटरी दूसरी बैटरी इसको क्या कर देगी। कितनी बड़ी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कितनी बड़ी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरी स्थिति या तो वो सारे बच्चों की स्थिति को एनर्जाइज कर सकती है, या मेरी स्थिति वो सारे बच्चों की स्थिति को थोड़ा सा, लेकिन ये किसी को पता नहीं चलने वाला, दिस इज द थिंग, ये किसी को दिखाई नहीं देता है। और फिर वो बच्चे 4 बजे एक सेशन के बाद दूसरा सेशन, दूसरे सेशन के बाद तीसरा सेशन करते 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 एक एक टीचर की एनर्जी फील्ड में आते आते शाम को अपने घर पहुंचते हैं। उनके घर में वो 2 बैटरीज आती हैं सारा दिन के थक कर, जो कहती हैं स्ट्रेस इज नॉर्मल, जेलेसी इज नॉर्मल, एंगर इज नॉर्मल, कॉम्पिटिशन इज नॉर्मल। वो 2 बैटरीज शाम को घर आती है उनके मम्मी पापा, वो बैटरी की तो आपको पता ही है कैसी वाली स्थिति होती है। तो वो बच्चे ऐसे आजकल क्यों हैं, ये क्वेश्चन थोड़ी उठना चाहिए, कि ये क्यों स्ट्रेस्ड हो रहे हैं, ये क्यों ऐसे हो रहे हैं, क्यों ये इतने जल्दी बोलते हैं ऐसे, क्यों ये बच्चे बोलते रहते हैं आई डोंट वॉन्ट टू लिव, क्यों कोई बच्चे के अंदर सुसाइड करने का थॉट आता है, ये सब क्या होने लगा? बैटरी गेटिंग डिस्चार्ज. फिर ये नहीं बोलो ये बैटरी डिस्चार्ज है बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन एंड प्रेशर. इट इज डिस्चार्ज ओनली बिकॉज ऑफ द बैटरीज ऑफ द एडल्ट अराउंड देम, उनके इर्द गिर्द बड़े कौन से. वो बेटी अपनी मम्मी को बोलती है सुना सुना देखा क्या बोल रहे. सी क्यों? क्योंकि इट इज आवर स्टेट ऑफ माइंड. हमें सिर्फ एक सिंपल चीज करनी है, अपने मन का ध्यान रखना शुरू करना है. एंड ये आज से हमें पक्का करना है कि मुझे सिर्फ सब्जेक्ट नहीं पढ़ाना है. वो तो हम पढ़ा रहे हैं, वो हमारा रोल है और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ये हमारा रोल है, वो हम बहुत अच्छा करते हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. हम आज से 10 साल बाद, आज जो फर्स्ट स्टैंडर्ड में है 10 साल बाद वो 10th स्टैंडर्ड से बाहर होगा. आप विजुअलाइज कर सकते हैं 10 साल के बाद के समाज को? यू विजुअलाइज 10 इयर्स फ्रॉम टुडे? आज का समाज में बच्चों के अंदर एडिक्शंस, ये वो इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस, ये सब है. विजुअलाइज अ वर्ल्ड 10 इयर्स फ्रॉम टुडे, 10 इयर्स फ्रॉम टुडे. उस सिचुएशन को यहां की पावर के बिना फेस नहीं किया जा सकता. तो ये हम पक्का करें कि जबकि अब स्कूल्स खुल रहे हैं, हम वापस जाने वाले हैं, अब तो जो बच्चे आएंगे 1.5 साल के बाद, वो तो वैसे ही बहुत कुछ देख कर आए हैं 1.5 साल के अंदर. ये तो वैसे भी दे आर नॉट गोइंग टू बी द सेम व्हाट दे वर 1.5 ईयर बैक, क्योंकि कईयों के घर में कुछ हुआ है, कईयों के घर में कोविड हुआ है, कईयों के घर में किसी ने किसी फैमिली मेंबर को खोया है, कईयों के घर में सिर्फ स्ट्रेस और एंजाइटी ही बहुत थी 1.5 साल के अंदर, तो उसका भी इम्पैक्ट बच्चों. सो राइट नाउ जो आपके पास आएंगे बच्चे क्लास में, वो तो वैसे भी सिचुएशन और दुनिया के हालात से थोड़ा सा अफेक्टेड आने वाले हैं. वो भी किसी को दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो अंदर की स्थिति होगी मन के. और हमें इसलिए बहुत ध्यान रखना है कि जब हम वापस जाएंगे, भले हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होंगी, प्रेशर्स भी ज्यादा हो सकते हैं, ये भी पूरा करना है, ये भी पूरा करना है, प्लीज रिमेम्बर क्या पूरा करना है उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा इनके मन को स्ट्रांग कैसे बनाना है. ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है. सडनली उनके ऊपर सिर्फ प्रेशर नहीं ऐसे डाल सकते हैं, दे आर नॉट येट कमिंग इन द मोस्ट पावरफुल स्टेट. वैसे भी वो आ भी तो थोड़े से फियर में ही रहे हैं ना, फियर में ही आ रहे हैं ना, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ तो नहीं आ रहे हैं जैसे पहले आते थे. वो निकलने से पहले वो सबसे इम्पोर्टेंट तो उनके मम्मी पापा भी फियर में हैं, तो वो बच्चा आ भी तो फियर की एनर्जी से रहा है ना पढ़ने, तो दे आर नॉट कमिंग इन द बेस्ट ऑफ स्टेट ऑफ माइंड. तो इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ती है. तो आज से हम अपना ध्यान रखना इसको प्रायोरिटी बनाते हैं. स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस. ये फिजिक्स में हमको सिखाते हैं ना, स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस. प्रेशर सिचुएशन है, सिचुएशन है, लेकिन रेजिलियंस इनर पावर है, इनर पावर है. सिचुएशन जब भी हमारे अनुसार नहीं होती, हम कहते हैं स्ट्रेस इज नॉर्मल. सबसे इंपॉर्टेंट रोल, आपका सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो आपको अपनी क्लास को, अपने बच्चों को सिखाना है, नॉर्मल क्या है, नॉर्मल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है. इमोशनल हेल्थ नॉर्मल क्या है, अब आप खुद चेक कीजिए, क्या स्ट्रेस नॉर्मल होता है? भले हम क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन क्या स्ट्रेस नॉर्मल होता है? जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं, हमारे को नॉर्मल फील हो रहा होता है यहाँ पे. हाँ, बहुत ज्यादा बार क्रिएट करते हैं तो वही हमारी स्टेट ऑफ माइंड बन जाती है, लेकिन क्या वो कंफर्टेबल होती है? क्या हमारी बॉडी उस टाइम कंफर्टेबल होती है? क्या हमारा बात करने का तरीका उस टाइम कंफर्टेबल होता है? क्या हमारी पल्स रेट उस टाइम ठीक होती है? क्या एंगर नॉर्मल है? आजकल हम सबके घर में ऑक्सीमीटर है, चेक करना एक दिन. वैसे तो आप सबने आज गुस्सा छोड़ दिया, लेकिन फिर भी अगर बाय चांस आ जाए या कर दें, तो उसी टाइम ऑक्सीमीटर जरूर लगा लेना, ऑक्सीमीटर लगा लेना और देखना कि गुस्सा करने के बाद पल्स कितनी होती है और ऑक्सीजन सैचुरेशन किधर तक पहुंचता है. उधर ही पता चल जाएगा कि वो नॉर्मल नहीं है. नॉर्मल होता तो फिर नॉर्मल पल्स दिखानी चाहिए ना, ये क्यों बदल गई पल्स? क्योंकि एंगर नॉर्मल नहीं है. सो फ्रॉम टुडे फर्स्ट थिंग, वी विल नॉट कॉल अनकंफर्टेबल इमोशंस एज नॉर्मल. क्योंकि अगर हम अपना बिलीफ सिस्टम ठीक कर लें, हम पूरी जेनरेशन का बिलीफ सिस्टम ठीक कर सकते हैं। आपके पास वो पावर है, आप एक एंटायर जेनरेशन को समाज में भेज सकते हो जिसका बिलीफ सिस्टम नॉर्मल वाले पे आ जाए, फिर से नॉर्मल वाले पे आ जाए। सो लेट्स क्रिएट टू कॉलम्स, दिस साइड एंड दिस साइड। दिस इज नॉट नॉर्मल एंड दिस इज नॉर्मल। दिस इज इमोशनल इलनेस, दिस इज इमोशनल हेल्थ। दो कॉलम बनाते हैं। स्ट्रेस, ये एक इमोशनल इलनेस है। इमोशनल हेल्थ है काम एंड स्टेबिलिटी। काम एंड स्टेबिलिटी, ये इमोशनल हेल्थ है। स्ट्रेस एक इमोशनल इलनेस है। एंगर, ये एक इमोशनल इलनेस है। रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, ये इमोशनल हेल्थ है। मतलब बोलो जो बोलना है, डिसिप्लिन करना है करो, स्ट्रिक्ट भी हो लेकिन गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं। अब कई टीचर्स बहुत प्यार से कहते हैं हमें, बाहर से हम ऊपर ऊपर से गुस्सा करते हैं। ऊपर ऊपर से कोई गुस्सा कर नहीं सकता, कर ही नहीं सकते आप। कोई भी चीज ऊपर से करने के लिए अंदर पहले क्रिएट करनी ही पड़ती है। इवन एक एक्टर, हम में से तो कोई एक्टर नहीं है, लेकिन जो प्रोफेशनली एक्टर्स हैं वो बोलते हैं हमें वो इमोशन अंदर पहले क्रिएट करनी पड़ती है, फिर वो बाहर निकल कर आती है। ऐसा ऊपर से कोई नहीं कर सकता है गुस्सा। तो डोंट डिसीव योर सेल्फ, डोंट चीट योर सेल्फ, मैं तो सिर्फ ऊपर ऊपर से कर रहे थे। नहीं, आप बहुत स्टेबिलिटी से, आप किसी के साथ स्ट्रिक्ट हो सकते हो बच्चे के साथ, लेकिन एंगर नहीं। मतलब आप डिसिप्लिन कर रहे हैं लेकिन डिस्टर्ब्ड एनर्जी नहीं रेडिएट कर रहे, आप डिस्टर्ब्ड एनर्जी नहीं रेडिएट कर रहे। ना आपकी बैटरी डिप्लीट हो रही है, ना बच्चे की बैटरी डिप्लीट हो रही है, लेकिन बच्चे की गलती के लिए करेक्शन मिल रहा है। और अगर आप काम एंड स्टेबल होंगे और फिर डिसिप्लिन करेंगे तो आपकी बैटरी बढ़ रही है, बच्चे की भी बैटरी बढ़ रही है और डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा रहा है, ये भी हो सकता है। इट्स वेरी इजी, दिस इज अ लाइफस्टाइल चेंज। हमें ये लाइफस्टाइल चेंज लाना है। तो एंगर इज इमोशनल इलनेस, रिस्पेक्ट डिग्निटी, कभी भी अपशब्द नहीं, कभी भी ऐसा हलचल नहीं, स्टेबल, दिस इज इमोशनल हेल्थ। फियर इज इमोशनल इलनेस, कभी किसी को नहीं कहना इट्स ओके आई अंडरस्टैंड फियर इज नॉर्मल, फियर इज नॉट नॉर्मल, फियर इज एन इमोशनल वीकनेस। अब हम वीकनेस को ही नॉर्मल बोल देते हैं। फेथ इज नॉर्मल, कॉन्फिडेंस इज नॉर्मल। क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट है? अगर मुझे पता होगा ये नॉर्मल नहीं है तो मैं कुछ तो करूंगी ना थोड़ा पुरुषार्थ तो उसको नॉर्मल पे लाने के लिए। लेकिन मेरी कमजोरी को ही अगर किसी ने कह दिया नॉर्मल है तो मैं तो कमजोरी को फिनिश करने का पुरुषार्थ ही नहीं करना, क्योंकि मुझे लगेगा ये नॉर्मल है। तो फियर इज नॉट नॉर्मल, इट्स एन इमोशनल इलनेस। फेथ एंड कॉन्फिडेंस इज नॉर्मल। कंप्लेनिंग इज नॉट नॉर्मल, इट्स एन इमोशनल इलनेस। ग्रेटिट्यूड इज नॉर्मल। आपके जीवन में सब कुछ गड़बड़ होना, अगर सब कुछ, वैसे तो कभी होगा ही नहीं ऐसा, लेकिन सब कुछ भी गड़बड़ होना तो भी शुक्रिया करो। शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया सब कुछ इतना परफेक्ट है, मेरा मन शरीर ठीक ठाक चल रहा है, तो मैं उठ रही हूं, तो मैं ये काम कर रही हूं, शुक्रिया। मेरे आसपास लोग कितने अच्छे हैं, शुक्रिया। प्रकृति कितनी अच्छी है, शुक्रिया। सब कुछ इतना अच्छा है मेरे जीवन में, शुक्रिया। आप सिर्फ शुक्रिया क्रिएट करिए वर्ड्स एंड दिल से, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं झूठ बोल रही हूं, मेरा मन और शरीर ठीक है तभी तो मैं उठी हूं ना, तो मेरे को शुक्रिया नहीं करना चाहिए उस चीज के लिए। तो आप जस्ट शुक्रिया क्रिएट करेंगे, विच मीन्स ग्रेटिट्यूड क्रिएट करेंगे, इट्स अ हाई एनर्जी वर्ड। एंड कंप्लेनिंग क्या है? लो एनर्जी एनर्जी। अब कंप्लेन करना हो तो सुबह उठ के ओहो लेट हो गया, आज का तो दिन ही पूरा ऊपर नीचे होने वाला है, अब ये मेरा पीठ भी दुख रहा है, क्या करूं, कुछ भी करूं ये ठीक ही नहीं होता है। किचन में गए, ओ बाबा मुसीबत, आज तो नलके में भी पानी नहीं है, आज का तो दिन ही बुरा है, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। फिर मॉल खिड़की खोली, अब ये बारिश भी आज ही होनी थी, कितना डिप्रेसिव वेदर है। बोलते जाओ, बस चार पांच बार ऐसे बोल दिया कुछ, सारी एनर्जी डाउन हो जाएगी, सारी एनर्जी डाउन हो जाएगी, एंड फिर हम स्कूल में वो डिप्लीटेड बैटरी के साथ पहुंच जाएंगे। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्रेटिट्यूड। ऐसे नहीं बोला जाता ग्रेटिट्यूड इज द बेस्ट एटीट्यूड, बिकॉज इट्स इज गोइंग टू टेक योर एनर्जी ऊपर। कुछ साल पहले वो पिक्चर आई थी ना, ऑल इज वेल, किसने किसने देखी थी ऑल इज वेल वाली पिक्चर? ऑल इज वेल वाली देखी थी ना पिक्चर, के सब कुछ भी गड़बड़ हो रहा हो तो यहां हाथ रखो और बोलो ऑल इज वेल, तो सब वेल हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या है? इट्स टीचिंग अस हाउ टू टेक केयर ऑफ द माइंड, कि जो ठीक नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन पहले अपने मन को तो ठीक कर लो। ऑल इज वेल बोलने से मन ठीक हो जाता है, स्थिति ठीक होती है, और जब स्थिति ठीक होती है तो परिस्थिति को क्रॉस करना बहुत इजी हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है। तो इसीलिए ग्रैटिट्यूड इज नॉर्मल, नॉट कंप्लेनिंग। क्रिटिसाइजिंग पीपल, निंदा करना, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, नॉट नॉर्मल, नॉट नॉर्मल। अप्रिशिएटिंग पीपल, मोटिवेटिंग पीपल, ये नॉर्मल है। कभी भी किसी बच्चे को ये नहीं कहना ये आपके अंदर ठीक नहीं है, ये आपके अंदर गलत है, ये गलत। आप उसको पहले बताओ उसके अंदर सब कुछ अच्छा क्या क्या है, अच्छा क्या क्या है, विशेषताएं। कभी सुनाते नहीं है ज्यादा लोग विशेषताएं, कमजोरियां सुना देते हैं। विशेषताएं क्यों नहीं सुनाते, कहते हाँ वो तो विशेषता है ही ना, जो ठीक करना है वो मुझे बताना है उसको। तो लेकिन जब तक हम उसको विशेषताएं नहीं सुनाएंगे, उसके कॉन्फिडेंस और एनर्जी को बिल्ड नहीं करेंगे, तब तक वो अपनी कमजोरी को ठीक नहीं कर सकेंगे, उनके पास शक्ति नहीं आएगी। हमारे पास, हमारे बड़े ब्रह्मा कुमारीज में हमारी दादीज, वो हमारी विशेषताएं देखती हैं, विशेषता देखती हैं, विशेषता सुनवाती हैं, विशेषता बताती हैं, और फिर हल्के से बोलती हैं, मतलब ये एक वाली, ये वाली चीज है ना, इस पे भी आप काम कर लेना, फिनिश्ड। तो ज्यादा टाइम विशेषता के बारे में बात करते हैं और एंड में एक लाइन में वो जो चीज ठीक करनी है वो बता देते हैं। हम क्या बोलते हैं, हम एक लाइन में विशेषता बताते हैं और फिर हम एक पेज उनकी गलती सुनाते हैं लोगों को कि ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं है। अब व्हाई द डायनामिक्स हैज टू बी लाइक दिस, क्योंकि जब आप किसी को विशेषता सुना रहे हो आप हाई एनर्जी रेडिएट कर रहे हो सामने वाले को, आप खुद हाई एनर्जी क्रिएट कर रहे हो विशेषता सुनाते समय, और आप हाई एनर्जी उसको रेडिएट कर रहे हो। आपने उसकी बैटरी को चार्ज कर दिया, फिर आपने कहा ये एक बात को भी ठीक कर लो। अब उसके पास पावर है उस बैटरी में उस बात को ठीक करने की, उस बात को ठीक करने की। लेकिन अगर हमने कहा हाँ हाँ बाकी सब आप कुछ, आप सारे सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हो, लेकिन इस सब्जेक्ट में तो ये प्रॉब्लम है, 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 तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तो फिर क्या होता है, वो बैटरी ही कम हो जाती है। उसको पता है उसके अंदर वो कमजोरी है, लेकिन ठीक करने की शक्ति नहीं होती है, शक्ति नहीं होती है। इसीलिए अप्रिशिएट, अप्रिसिएशन विल मोटिवेट दैट पर्सन, इट विल एनर्जाइज देम, एंड नॉट फॉल्स अप्रिसिएशन, ट्रू अप्रिसिएशन, जो उस आत्मा के अंदर सच है बात, जो उसकी विशेषता है सच सुनानी है। जब वो आत्मा अपने अंदर की विशेषताएं देखती है तो फिर वो एक और चेंज लाना उसके लिए मुश्किल नहीं होता है, नहीं होता है। लेकिन होता क्या है, हमारे अंदर जो वो एक दो कमजोरियां होती हैं, सबका इंटेंशन बहुत अच्छा होता है, हमारे मम्मी पापा का इंटेंशन बहुत अच्छा होता है, हमारे टीचर्स का इंटेंशन बहुत अच्छा होता है कि इस बच्चे में ये वाली चीज ठीक हो जाए। लेकिन वो क्या होता है, सब लोग उसी के बारे में बात करते हैं, तुम्हारा ये ठीक नहीं है, तुम्हारा ये ठीक नहीं है, तुम्हारे, वो स्कूल जाता है टीचर्स बोलते हैं तुम्हारा ये ठीक नहीं है, घर जाता है मम्मी पापा तुम्हारा ये ठीक नहीं है। तो वो इतनी बार 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 उस बात पर फोकस होता है तो उसकी वजह से उसको थोड़े से क्रिटिसिज्म मिलता है, तो उसकी शक्ति घट जाती है। तो अप्रिसिएशन इज इमोशनल हेल्थ, क्रिटिसिज्म इज इमोशनल इलनेस, राइट। ऐसे लिस्ट बनाते जाएं, एक्सपेक्टेशंस दिस इज इमोशनल इलनेस, एक्सेप्टेंस इज इमोशनल हेल्थ, हर्ट इज इमोशनल इलनेस, उन्होंने मुझे हर्ट किया, उनकी वजह से मैं हर्ट हूं, हर्ट इज इमोशनल इलनेस। कोई हमें हर्ट नहीं कर सकता है, वो जो बोल सकते हैं वो बोल सकते हैं, लेकिन वो हमें हर्ट नहीं कर सकते, कोई हमारे माइंड में घुस के हमारी थॉट्स नहीं क्रिएट कर सकता। सो हर्ट इज इमोशनल इलनेस, फॉरगिव, क्षमा करो। रोज रात को सोने से पहले क्षमा जरूर करो, रोज करना है क्षमा। सारा दिन में अगर किसी ने भी कुछ ऐसा बिहेव किया हो जो हमें कंफर्टेबल नहीं लगा हो, हमें रात को सोने से पहले उन्हें क्षमा करना है। जस्ट राइट, आई फॉरगिव दिस वन, दिस वन, दिस वन, आई फॉरगिव, आई फॉरगेट। अगर रात को कर दिया ना तो कोई बात मन चित पे रहेगी नहीं, अगले दिन सुबह नहीं करना है, सोने से पहले करना है। क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड खुलता है और सारा दिन का जो कॉन्टेंट है वो अंदर चला जाता है। इट्स लाइक कुछ सामान बाहर बाहर पड़ा है, वो बाहर ही जब तक पड़ा है वो सफाई हो जाएगी, लेकिन अगर आपने अलमारी खोल के उसको अंदर डाल दिया ना ऐसा, तो पता नहीं वो कितने कितने दिन और साल अंदर पड़ा रहता है फिर। और अंदर से साफ करना ज्यादा मुश्किल होता है, बाहर की चीज को तो फटाफट फटाफट सफाई हो सकती है। कई चीजें हमारे जीवन में हैं, हम कहते हैं मुझे भूलती ही नहीं, मुझे भूलती ही नहीं, आई एम नॉट एबल टू फॉरगिव दैट पर्सन, आई एम नॉट एबल टू फॉरगेट दैट थिंग। क्यों नहीं भूल रहे हैं? क्योंकि हमने उस रात सोने से पहले उसको साफ नहीं किया था, और जब हम सोए तो वो हमारी सबकॉन्शियस के अंदर चला गया। इसीलिए लोग कहते हैं जो भी झगड़े हो रात को सोने से पहले सुलझा लेने चाहिए। बोलते हैं ना, झगड़ा डोंट टेक अ फाइट टू बेड। सोने से पहले अपने झगड़े सुलझा लेने चाहिए, विच मीन्स झगड़ा सिर्फ जो दो लोगों के साथ होता है वो नहीं, जो मेरे मन के अंदर झगड़े चल रहे हैं, जो मेरे मन के अंदर डिस्टर्बिंग थॉट्स चल रही हैं, मुझे सोने से पहले उनको ठीक करना है, अदरवाइज दे गो डीप इन टू माई पर्सनैलिटी, मेरी सब कॉन्शियस में चली जाती है। तो हर्ट इलनेस है, फॉरगिवनेस ये इमोशनल हेल्थ है, कॉम्पिटिशन इमोशनल इलनेस है, कोऑपरेशन इमोशनल हेल्थ है। ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कल्चर है जो स्कूल्स में क्रिएट करना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इससे तो पूरा समाज ही बदल सकता है। बच्चों को कंपीट ना कराएं एक दूसरे के अगेंस्ट एकेडमिकली, उनको बोलो आप सब पढ़ोगे, आप सबके पास फर्स्ट आने की क्षमता है, एवरीवन कैन कम फर्स्ट इन विच इज अ फैक्ट, एवरीवन इज अलाउड टू गेट 100 on 100, उसमें क्या बड़ी बात है। उनको कभी भी एक दूसरे के साथ कंपीट करने का कल्चर नहीं डालो, क्योंकि समाज की पहली बात बहुत ज्यादा वो कल्चर डाल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वी आर ग्रोइंग अप टू बी पीपल हु आर ओनली कंपीटिंग विद ईच अदर। हम कंपीट कर रहे हैं। जब अभी आपने ओलंपिक्स देखा होगा, लोग रेस में थे, लोग स्विमिंग की रेस में थे, कोई भी चीज में थे, जितनी देर कोई एक रेस में होता है आप उसका चेहरा देखिए कैसा होता है, इट्स सो मच प्रेशर, क्योंकि वो एक रेस के अंदर है। आज तो हमने अपनी जीवन को एक रेस बना दिया कि हम तो कंपटीशन में हैं। कोई बोलता है स्कूल में कंपटीशन है, तो स्कूल के बाद कहाँ कंपटीशन खत्म होता है, कॉलेज में कंपटीशन है, फिर प्रोफेशनली कंपटीशन है, और फिर वो कंपटीशन ऐसा संस्कार बन जाता है कि घरों में भी कंपटीशन होता है, घरों में भी कंपटीशन होता है, तो जीवन में खुशी कहां से आएगी, खुशी कहां से आएगी, सारा दिन सबके साथ रेस में है। लाइफ इज नॉट अ कॉम्पिटिशन, लाइफ इज अ जर्नी अबाउट शेयरिंग, केयरिंग, काइंडनेस एंड कोऑपरेशन, कोऑपरेशन। हमें ये कल्चर इनकलकेट करना है कि एक बच्चा दूसरे बच्चे को सिखाए जिस सब्जेक्ट में वो ज्यादा अच्छा है, तुम्हें यह आया ना तुम उसको समझाओ, बजाय कि आप नहीं समझाओ, आप बाद में समझाना, पहले बोलो आप इसको ये समझाओ, आपको ये वाला आंसर आ गया ना, आप इसको ये समझाओ। दे शुड बी अ लिटल टाइम एवरी डे टू इनकलकेट अ कल्चर ऑफ शेयरिंग, केयरिंग, काइंडनेस एंड कोऑपरेशन, क्योंकि ये चार चीजें उस बच्चे की इमोशनल हेल्थ को स्ट्रांग बनाएंगे। बच्चे वाला फर्स्ट आ रहा है, लेकिन वो ऐसे है, अपनी कोई चीज किसी को बताता नहीं, मैं ही पढ़ूंगा, मैं ही आगे जाऊंगा, मैं ही फर्स्ट आऊंगा, तो वो फर्स्ट आ जाएगा, लेकिन उसकी ये बैटरी को कौन चार्ज करेगा? वो चार्ज होती है दूसरों के साथ शेयर करके, दूसरों को सिखा के, द पावर टू गिव, उनको गिवर बनाना है, देने वाला बनाना है। जो गिवर होता है ना उसकी इमोशनल हेल्थ हाई होती है, जो सारा दिन सिर्फ ऐसे 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 वाला होता है ना उसकी इमोशनल हेल्थ डाउन होती है। तो हमें वो बच्चों को गिवर बनाना है, तो हर चीज में उनको दूसरे के साथ शेयर करना, दूसरों का ध्यान रखना, दूसरे के साथ काइंड होना, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एकेडमिकली दूसरों के साथ कोऑपरेट करना। बोलो वी आर नॉट इन अ कॉम्पिटिशन, वी आर ऑल स्टडिंग, एंड जितना जितना हम पढ़ने वाले हैं उतने उतने हमारे नंबर। कभी किसी बच्चे को नहीं कहना उस बच्चे का देखो कितना अच्छा आया है, तुम्हारा क्यों नहीं। नो कंपैरिजन, नो कंपैरिजन, कंपैरिजन उस बच्चे का सिर्फ उस बच्चे की परफॉर्मेंस से ही करना है कि ये आपकी क्षमता है, आप यहां तक। कभी भी इवन घर पे कभी भी दो बच्चों का कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, इट्स वेरी डिसरिस्पेक्टफुल फॉर द सोल। बहुत ह्यूमिलिएटेड फील करती है आत्मा जब अगर उसका कंपैरिजन किसी और के साथ होता है। लेकिन ये सारी चीजों को हमने नॉर्मल बना दिया आजकल के, ये तो नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल है, और उसकी वजह से हमारी इमोशनल हेल्थ थोड़ी सी डाउन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें स्कूल में क्रिएट करनी है वो है डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, क्योंकि हर एक को एक ही चीज चाहिए, सफलता, जो कि अच्छी बात है, आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल, लेकिन वॉट आई वॉन्ट टू बी, आई नीड टू बी क्लियर वॉट इट इज, राइट, कि सफलता है क्या, सक्सेस है क्या। हम सब एज अ सिविलाइजेशन हमें पता था कि सफलता है क्या, लेकिन पिछले कुछ डेकेड्स के अंदर हमने सफलता की डेफिनेशन को चेंज कर दिया है और आजकल हम सफलता सिर्फ उसी को कहते हैं जो कुछ अचीव करते हैं। तो चाहे वो एकेडमिकली अचीव करें, चाहे वो स्पोर्ट्स में अचीव करें, चाहे वो किसी टैलेंट में अचीव करें, मतलब जो अचीव करता है उसको लोग सक्सेसफुल कहते हैं और जो नहीं अचीव करता है उसको लोग फेलियर कहते हैं। ओ दिस पर्सन इज अ फेलियर, ओ दिस पर्सन इज अ लूजर, मतलब वो हार गया, वो फेलियर है। तो ऑब्वियसली हर एक को क्या चाहिए? सक्सेस। अब अपने आप से पूछते हैं, क्या सफलता सिर्फ ये है कि अचीव करना, परफॉर्मेंस में अचीव करना? इज दिस सफलता ओनली? सफलता कौन से शब्द से आता है? सफल, सफल शब्द से सफलता है, इसीलिए इंग्लिश नहीं हिंदी शब्द को लेते हैं सफल। और सफल मतलब क्या होता है? सफल, आपने अपना टाइम सफल किया, आपने आज का दिन सफल किया, आपने अपना जीवन सफल किया, विच मीन्स द पावर टू गिव। सफलता किसको कहेंगे? जो खुश रहता है, जो हेल्दी है, जिसके रिश्ते प्यारे हैं और वो अचीव भी कर रहा है अपनी शक्ति से। अचीवमेंट यथाशक्ति होती है, यथाशक्ति होती है। हर एक फर्स्ट नहीं आता है, लेकिन हर एक खुश रह सकता है, हर एक हेल्दी हो सकता है, हर एक के रिश्ते प्यारे हो सकते हैं। परफॉर्मेंस यथाशक्ति होगी एज पर कैपेसिटी, क्योंकि आईक्यू हर एक की सेम नहीं हो सकती है, लेकिन ईक्यू हर एक की सेम हो सकती है। ईक्यू हर एक की सेम हो सकती है। अचीवर सब नहीं हो सकते हैं, मतलब सेम नहीं होंगे, कोई इतना अचीव करेगा, कोई उससे थोड़ा कम, कोई उससे थोड़ा ज्यादा। अचीवर सेम नहीं हो सकते हैं, लेकिन हैप्पी, हेल्दी एंड ब्यूटिफुल रिलेशनशिप्स, ये सब सेम हो सकते हैं, हम सब सेम हो सकते हैं। तो आईक्यू में किसी की 5 हो, किसी की 8 हो, किसी की 10 हो, लेकिन ईक्यू सबकी 10 हो सकती है, सबकी 10 हो सकती है। तो अचीवर अलग अलग होंगे, लेकिन सक्सेसफुल सारे हो सकते हैं, सारे हो सकते हैं। लेकिन कई बार कोई क्योंकि अचीव नहीं करता है तो उसको इतना समाज से रिजेक्शन मिलता है कि फिर उसकी खुशी खत्म हो जाती है, उसकी हेल्थ पे असर पड़ जाता है। तो वो सिर्फ जीवन की एक चीज में थोड़ा सा उसके पास कम था, अचीवमेंट में। समाज की डेफिनेशन ऑफ सक्सेस उसके बाकी चीजों पर भी असर डाल देती है। और दूसरी तरफ एक होगा जो अचीवर में नंबर 1 है समाज के अंदर, लेकिन कोई नहीं देख रहा कि ये खुश है क्या, ये हेल्दी है क्या, इसका लोगों के साथ रिश्ते हैं, नहीं नहीं नहीं, ये सक्सेसफुल है क्योंकि इसका मैगजीन के ऊपर कवर पे फोटो आ गया था। दिस हैज टू चेंज बिकॉज दिस इज नॉट ट्रू, ये सच नहीं है। हम कितना कमाते हैं वो सफलता नहीं होती है, हम कैसे कमाते हैं वो सफलता होती है। हम कितने एथिकल हैं, हमारे कितने वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स हैं, कमाने का तरीका कितना अच्छा है, लोगों के साथ कितना अच्छा रहते हैं, वो सक्सेसफुल होता है। बाकी सब सिर्फ अचीवर होते हैं। तो अचीवर नहीं बनाने, सिर्फ सक्सेसफुल बनाना है। जो सक्सेसफुल बनाएंगे वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा अचीव कर लेंगे। जिसकी ईक्यू हाई होगी वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा अचीव करेगा, विच मीन्स अगर मेरी कैपेसिटी 80% मार्क्स लाने की है लेकिन मेरा माइंड पावरफुल है, मेरा 80 से 85 जाना ही जाना है, जाना ही जाना है, 80 से 85 मैं जाऊंगी अगर मेरा माइंड काम है, स्टेबल है, पावरफुल है। लेकिन अगर मेरी कैपेसिटी 95 है और मैंने एंग्जाइटी क्रिएट कर दी, स्ट्रेस क्रिएट कर दिया, तो 95 से 90 मैंने चले जाना है। तो इसलिए ईक्यू कैपेसिटी को बढ़ा देता है, और ईक्यू का ध्यान नहीं रखे तो ईक्यू ही कैपेसिटी को घटा भी सकता है। ब्लैंक आउट हो जाते हैं बच्चे एग्जाम वाले दिन, ब्लैंक को मेरे को याद ही नहीं रहा, केयरलेस मिस्टेक कर देते हैं एग्जाम के अंदर, सब कुछ आता था, सारे एग्जाम्स प्रैक्टिस किए थे, सब कुछ किया था, एग्जाम वाले दिन केयरलेस मिस्टेक हो गया, पूरे साल की मेहनत केयरलेस मिस्टेक हो गया। केयरलेस मिस्टेक क्यों हुआ? माइंड स्ट्रेस्ड। तो जितना हम मेहनत परफॉर्मेंस पे करते हैं, अगर हम उसका 1% अटेंशन भी साथ साथ माइंड पर रख लें, तो हम हर एक की परफॉर्मेंस को इनहेंस कर देंगे। जो स्पोर्ट्स में होगा वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा अच्छा करेगा, जो डांस में है म्यूजिक में है वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा अच्छा करेगा, क्योंकि माइंड के वाइब्रेशंस ऊपर चले जाएंगे। कुछ लोगों के लिए लोग कहते हैं ना इनके हाथ में शफा है, कहते हैं ना इनके हाथ में शफा है। वो शफा कैसे आती है हाथ के अंदर, कैसे आती है किसी के हाथ के अंदर शफा? इट मीन्स इनकी वाइब्रेशन बहुत बड़ा काम करती है। इनके पास जाओ, इनके पास जाओगे ना तो ठीक हो जाएगा। व्हाट इज दैट शफा? इट इज ओनली इमोशनल हेल्थ, इट इज गुड कर्मा, इट इज अच्छे संस्कार। बिकॉज जो हम डूइंग में लाते हैं उसमें हमारा बीइंग, हमारी वाइब्रेशन इम्पैक्ट करता है। अगर हम बच्चों को ये सिखाएंगे कि सफलता क्या है, सिर्फ अचीवमेंट नहीं है, तो वो बच्चे अचीव करेंगे लेकिन एथिकली करेंगे, वैल्यू बेस्ड तरीके से करेंगे, समाज को एक डिफरेंट समाज बनाएंगे जहां हमारे संस्कार और कर्म महत्वपूर्ण होंगे। इसीलिए पहले जो एजुकेशन सिस्टम था वो गुरुकुल सिस्टम हुआ करता था। तो गुरुकुल सिस्टम में क्या होता था, ये सारी पढ़ाई भी पढ़ाई, मतलब सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए, और ये वाली पढ़ाई भी पढ़ाई, संस्कार, वैल्यूज, ज्ञान, मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम ये भी कराया, और बाकी सारी दुनिया के सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए। अब जो हमारा एजुकेशन सिस्टम हो गया उसमें सिर्फ सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, तो वो सिस्टम थोड़ा सा इनकम्प्लीट रह जाता है। तो हमें सिर्फ उसको इनकल्केट करना है। हमारे पास ये पावर है, हमारे देश की ये संस्कृति है कि अगर हमने उन चीजों को वापस इनकल्केट कर दिया ना, यहां से विदेश बच्चे नहीं जाएंगे पढ़ने के लिए, लेकिन ये पक्का है कि विदेश से बच्चे यहां आएंगे पढ़ने के लिए। बिकॉज वो वाली चीजें, वो रिचनेस जो हमारे पास है संस्कृति में, वो हमें सबको देना है ड्यूरिंग द एजुकेशन सिस्टम, चाहे वो स्कूल के थ्रू, कॉलेज के थ्रू, यूनिवर्सिटीज के थ्रू, कि आप सिर्फ लीडर बाय रोल एंड पोजिशन नहीं बनते, आप लीडर बाय पर्सनैलिटी बनते हैं, आप लीडर बाय पर्सनैलिटी बनते हैं। इसीलिए गुरुकुल में राजा के बच्चे को भी गुरुकुल भेजा जाता था। बताओ राजा का बच्चा गुरुकुल क्यों जाना चाहिए? आ नहीं सकता क्या कोई टीचर उसको राजमहल में पढ़ाने के लिए? लेकिन राजा के बच्चे को भी गुरुकुल में रहना होता था, त्याग की जीवन रहनी होती थी, तपस्या करनी होती थी, सेवा करनी होती थी, सबके साथ एक साधारण तरीके से जीना होता था, क्योंकि दूसरों पर राज्य करने के लिए पहले स्व पर राज्य करना पड़ता है, और स्व पर राज्य करने के लिए वो गुरुकुल में जाते थे। दूसरों पर राज्य करना तो शिक्षक आके उनको राजमहल में सिखा सकते हैं, स्व पर राज्य करना नहीं सिखा सकते, उसके लिए वो जाते थे। तो दिस स्व पर राज्य, दिस इज इमोशनल हेल्थ, दिस इज सेल्फ मैनेजमेंट, दैट इज लीडरशिप क्वालिटी, दैट इज अ डॉक्टर, दैट इज अ ज्यूरिस्ट, दैट इज अ बिजनेस लीडर, दैट इज अ पेरेंट। एक पेरेंट पहले स्व पर राज्य करना चाहिए, उससे पहले वो बच्चों के ऊपर नहीं कर सकता। आजकल क्यों कहते बच्चा कहना नहीं मानता? बच्चा कहना नहीं मानता क्योंकि हमारा मन हमारा कहना नहीं मानता, तो बच्चे का मन हमारा कहना कैसे मानेगा? तो स्व पर राज्य करना है। सो व्हाइल वी आर टीचिंग व्हाट वी आर टीचिंग, दिस इज नाउ आवर प्रायोरिटी, ये हमारी प्रायोरिटी है। एक डेफिनेशन ऑफ राइट एंड रॉन्ग, नॉर्मल क्या है, सारा दिन में अपने बात करने के तरीके में इसको इनकल्केट करना, नहीं दिस इज नॉट नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल, कॉम्पिटिशन नॉट नॉर्मल, कोऑपरेशन इज नॉर्मल। सेकेंड, सक्सेस की डेफिनेशन 10 साल उनके अंदर इतना भर दो जब तक वो 10th 12th तक पहुंचते हैं कि जीवन भर उनकी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस नहीं अफेक्ट होनी चाहिए समाज के अंदर बाहर जाके। उनकी प्रायोरिटी बहुत क्लियर होनी चाहिए कि मुझे सिर्फ बनना नहीं है, मुझे एथिकल, वैल्यू बेस्ड, प्रिंसिपल्ड, केयरिंग, कंपैशनेट, फिर वो बनना है जो मुझे बनना है। सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं, संस्कार। संसार परफॉर्मेंस से नहीं बनता है, संसार संस्कारों से बनता है, संस्कार से संसार, दैट इज द स्पिरिचुअल इक्वेशन। परफॉर्मेंस से संसार नहीं बनता है, खुशी भी परफॉर्मेंस से नहीं आती, संस्कारों से। सो वी हैव टू डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोलते हुए, सिखाते हुए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीते हुए डेफिनेशन ऑफ सक्सेस उनके अंदर भरनी है कि वो अचीव करें, बहुत करें, लेकिन ऑलवेज अ गिवर, सबको देते हुए, ये नहीं खुद के लिए। ऐसे जब हम होते जाएंगे ना तो समाज बहुत स्वार्थी होता जाता है, और स्वार्थी समाज स्वस्थ नहीं हो सकता, स्वस्थ नहीं हो सकता जो सिर्फ ये सोचे मेरे लिए इसमें क्या है, मेरा क्या है, मुझे चाहिए, आस पड़ोस में क्या हो रहा है, मुझे कोई लेना देना नहीं उससे। तो फिर कैसे समाज बनेगा, फिर कैसे स्वर्णिम भारत बनेगा? तो वो संस्कारों से बनता है। तो इसलिए जब आप पढ़ा रहे हो, एक छोटी सी चीज अब इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि अब नया ईरा स्टार्ट हो रहा है ना, ये 18 महीने के बाद। अकेडमिक को अप्रिशिएट आप करते हैं क्लास में, किसी ने बहुत अच्छा किया आप पूरी क्लास में बोलते हैं बहुत अच्छा किया बच्चे, वेरी गुड आंसर, वेरी नाइस रिजल्ट, वेरी दिस, हम अप्रिशिएट करते हैं। स्पोर्ट्स, आर्ट्स, ड्रामा, हम सब चीजों को अप्रिशिएट करते हैं। अब से हम हरेक की ओपनली पब्लिकली क्लास के अंदर वैल्यूज को अप्रिशिएट करना शुरू करें, वैल्यूज को अप्रिशिएट करना शुरू करें। एक कल्चर क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि हरेक को क्या चाहिए होता है, टीचर बोले मैं अच्छा बच्चा हूं, हरेक को ये चाहिए। लेकिन टीचर सिर्फ उन्हीं को अच्छा बच्चा बोल रही है जिनके अच्छे नंबर आए, मेरे को तो बोला ही नहीं क्योंकि मेरे तो नंबर अच्छे ही नहीं आए थे। लेकिन मेरी विशेषताओं के लिए किसी ने नहीं बोला कि मैं अच्छा बच्चा हूं, ना टीचर ने बोला, ना मेरे मम्मी पापा ने बोला। मेरे मम्मी पापा ने ये भी बोला, सबके नंबर इतने आए, तुम्हारे क्या आए, डफर हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, डांट ही दिया मुझे, डांट ही दिया। लेट्स स्टार्ट अप्रिशिएटिंग वैल्यूज पब्लिकली, डोंट से हाँ मुझे तो पता ही है वो बच्चे के अंदर है, पता है ना, बोलो सबके सामने, बोलो। जितना हम वैल्यूज को अप्रिशिएट करेंगे ना, सबके अंदर एक होड़ लग जाएगी, मेरे को भी वैल्यूज अपने अंदर लानी है, मेरे को भी लानी है, क्योंकि दिस इज व्हाट द सोसाइटी इज अप्रिशिएटिंग। अगर कोई बच्चा सच बोलता है, इट शुड बी पब्लिकली अनाउंस्ड इन द क्लास। आपको पता है आज इस बच्चे ने सच बोला है, आज इस बच्चे ने होमवर्क नहीं किया था, लेकिन उसने आके बोला कि मैम कल ना मैं अपने मम्मी पापा के साथ पिकनिक गया था ना, मैं इसलिए होमवर्क नहीं किया। और जब आप इसको पब्लिकली अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन साथ साथ बोलेंगे लेकिन होमवर्क करके आना है, लेकिन उसने सच बोला है, उसके बाद कोई बच्चा झूठ बोलने की जरूरत नहीं समझेगा, कोई बच्चा झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको पता होगा कि सच बोलने से डांट नहीं पड़ी, सच बोलने से सबके सामने मेरी अप्रिसिएशन हुई है। वो सब सच बोलेंगे इंस्टेड ऑफ सेइंग वो मैम मेरा पेट दर्द हो रहा था इसलिए मैंने होमवर्क नहीं किया। ये तो हमें भी दिख रहा होता है कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन हम क्या बोलेंगे, हम बोले प्रूफ थोड़ी मांगेंगे कि बताओ कैसे पेट दर्द हो रहा था, वो हमारे सामने झूठ बोलते हैं और हम कुछ नहीं बोल सकते, हम कहते हैं अच्छा चलो कोई बात कल करना। लेकिन अगर कोई बच्चा बोले मैम हम ना पिकनिक पे गए थे इसलिए होमवर्क नहीं किया, उसको डांट पड़ जाती है, तुम्हें पिकनिक पे जाना, तुम पिकनिक पे चले गए होमवर्क नहीं किया, उसको डांट पड़ जाती है, वो कैसे अगली बार सच बोलेगा। सो लेट्स स्टार्ट अप्रिशिएटिंग ऑनेस्टी, लेट्स स्टार्ट अप्रिशिएटिंग काइंडनेस, कि बच्चा कितना काइंड है, देखो इसने कितना ध्यान रखा, इसने ये किया, पब्लिकली इट शुड बी अप्रिशिएटेड। एंड यू नो एक स्टेप और अगर हम आगे जाएं, उसके लिए ना हमें स्टार भी देने चाहिए बच्चों को, जैसे हम बाकी चीजों के लिए स्टार देते हैं, उसके लिए स्टार दो। और अगर आप कुछ कर सको ना तो उसके लिए मार्क्स भी दो, अगर ये पॉसिबल है कि उसके लिए मार्क्स देने चाहिए। सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए मार्क्स मिलते हैं? अगर मुझे ये पता चल जाए कि पूरा साल अगर मैं ऑनेस्ट रही मुझे 5 नंबर ज्यादा मिलने वाले हैं, तो कौन झूठ बोलेगा उसके बाद? कोई झूठ बोलेगा ही नहीं, फ्री में 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं सिर्फ सच बोलने की वजह से। जस्ट बाय बीइंग केयरिंग एंड कंपैशनेट आई विल गेट 5 नंबर मोर, हरेक करना शुरू करेगा। वी हैव टू मेक वैल्यू सो इम्पोर्टेंट, संस्कार सो इम्पोर्टेंट, बाय अप्रिशिएटिंग इट, अक्नॉलेजिंग इट, अवॉर्डिंग इट हर स्कूल में। मेरे को हर साल स्कूल के बाद एग्जाम में हर साल अवार्ड मिले हैं, लेकिन किस चीज के लिए मिले? मैथ्स के लिए मिले, साइंस के लिए मिले, ड्रामा के लिए मिले, स्पोर्ट्स के लिए मिले, पर्सनैलिटी के लिए कौन अवार्ड देता है? कोई भी नहीं देता, इट्स नॉट देयर, वो अवार्ड ही नहीं है हमारे स्कूल के अंदर। हमें वो देना चाहिए, द मोस्ट ऑनेस्ट चाइल्ड ऑफ द क्लास, द मोस्ट केयरिंग चाइल्ड ऑफ द क्लास अवार्ड, ये अवार्ड मिलने चाहिए हर एनुअल डे के ऊपर। ऐसी अगर एक लहर क्रिएट कर दी ना संस्कारों की, बच्चे तो इतनी जल्दी अडॉप्ट करेंगे उस चीज को, इतनी जल्दी एक्सेप्ट करेंगे, वो तो एक साल में चेंज आ जाएगा पूरा क्लास के अंदर बच्चों। और इससे क्या होगा, एवरीबडी कैन बी सक्सेसफुल, नहीं तो सिर्फ जो फर्स्ट आ रहा है वही सक्सेसफुल है, फर्स्ट ईयर से लेकर 12th ईयर तक वही बच्चे सक्सेसफुल हैं सिर्फ, वही कोई ना फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में वही बच्चे आ रहे हैं सिर्फ, बाकियों की तरफ, बाकी तो कभी सक्सेसफुल हुए ही नहीं फिर, क्योंकि वो तो उनका नंबर तो 10 के बाद है या उनका नंबर तो 20 के बाद है। तो एक बच्चा 12 साल अगर ये सोचे कि मैं सक्सेसफुल ही नहीं हुआ, मैं सक्सेसफुल ही नहीं हुआ, मुझे तो कोई अवार्ड नहीं मिला, मुझे तो कोई प्राइज नहीं मिला, उसका सेल्फ एस्टीम अफेक्ट नहीं हो सकता उस बात से? अफेक्ट होता है ना, हीन भावना आ जाती है। लेकिन अगर वैल्यूज के लिए अवार्ड मिलेगा तो किसी भी बच्चे को मिल सकता है, एनी बडी। सो आई क्यू कैन बी डिफरेंट बट ई क्यू कैन बी एवरीवन हाई, एवरीवन कैन हाई ई क्यू। अगर कोई बच्चा है जिसने पूरे साल में एक बार भी गुस्सा नहीं किया है, एंड लेट द चिल्ड्रन सिलेक्ट, यू सिलेक्ट कि तुम्हारी क्लास में सबसे पीसफुल बच्चा कौन सा है। चलो आप चिटकी पे नाम लिखकर भरो, आप ही सबसे ज्यादा बच्चों को जानते हो, टीचर के सामने तो कोई गुस्सा नहीं करेगा, लेकिन ब्रेक में, खेलते के टाइम, बस के अंदर, विच चाइल्ड इज योर पीसफुल चाइल्ड, विच स्टूडेंट ऑफ द क्लास इज मोस्ट हैप्पी, लिखने दो। विच चाइल्ड इज द मोस्ट केयरिंग चाइल्ड, लेट देम चूज, दे विल वोट, दे विल सिलेक्ट, दे विल अवार्ड एंड दे विल गेट अवार्डेड। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कल्चर क्रिएट हो जाएगा, अच्छा ये चीजें भी इम्पॉर्टेंट हैं, ये चीजें भी इम्पॉर्टेंट हैं, ये चीजें सिर्फ एक मॉरल साइंस का लेक्चर नहीं है, ये चीजें इम्पॉर्टेंट है समाज में, इसलिए एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट, इसीलिए। और फिर जब हम अपनी कोई एनुअल बुक बनाएं, हम स्कूल की मैगजीन बनाएं, उन बच्चों के भी फोटो आने चाहिए उसके अंदर, नॉट ओनली परफॉर्मेंस। द बिगेस्ट शिफ्ट दैट वी नीड इन सोसाइटी, वी नीड टू शिफ्ट कि वी आर नॉट अ परफॉर्मेंस बेस्ड सोसाइटी, वी आर अ संस्कार बेस्ड सोसाइटी, संस्कारी समाज चाहिए। संस्कार अच्छे होंगे, परफॉर्मेंस तो और अच्छी हो जाएगी, परफॉर्मेंस कभी घट नहीं सकते अच्छे संस्कारों से। दैट बिग शिफ्ट इज नीडेड, और वो शिफ्ट इमोशनल हेल्थ को ऊपर कर देगा, अपने आप कर देगा वो इमोशनल हेल्थ सबकी अच्छी, क्योंकि सब लोग संस्कारों को प्रायोरिटी दे देंगे। और फिर हम छोटे छोटे स्टेप्स हर रोज अपने जीवन में करना शुरू करें, जिससे हम अपनी इमोशनल हेल्थ को बढ़ाएंगे। जैसे आज हमने सीखा कि डेली मेडिटेशन, डेली स्पिरिचुअल स्टडी, सबसे ज्यादा इफेक्ट माइंड पर किस चीज का पड़ रहा है, वो है कंटेंट कंजम्पशन, नॉट ओनली टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का उतना असर नहीं पड़ता, कॉन्टेंट कंजम्पशन का असर पड़ता है। कोई बच्चा अगर कंप्यूटर के साथ बैठा है या फोन के साथ बैठे हैं, ज्यादा देर बैठे हैं, लेकिन वो कुछ अच्छी चीज कंज्यूम कर रहे हैं, तो उनकी आईज पे स्ट्रेन पड़ेगा, लेकिन उनके माइंड के लिए तो वो अच्छा ही है। लेकिन अगर वो 15 मिनट भी बैठे हैं, लेकिन उस 15 मिनट में उन्होंने नेगेटिव चीज कंज्यूम की है, तो वो उनके माइंड के लिए हानिकारक है। तो इमोशनल हेल्थ के लिए चाहिए इमोशनल डाइट, और इमोशनल डाइट है व्हाट वी वॉच, व्हाट वी रीड, व्हाट वी लिसन। जो हम सुनते, पढ़ते, देखते हैं, वो हम बनते हैं, वो हम बनते हैं। सबसे ज्यादा परेशान आजकल पेरेंट्स किस बात से हो रहे हैं, वो अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी और कंटेंट से रोक नहीं पा रहे हैं, दे आर नॉट बीइंग एबल टू डू इट। वो क्यों नहीं रोक पा रहे, पहले अपने आप, क्योंकि खुद नहीं रोकते अपने आप को, तो उनकी बात का असर ही नहीं होता है बच्चे के ऊपर, क्योंकि वो खुद भी तो सारा दिन यही कर रहे हैं ना, तो उनकी बात का असर नहीं होता बच्चे के ऊपर। ये वाला जो परिवर्तन है, ये स्कूल से ही हो सकता है, ये स्कूल से ही हो सकता है, क्योंकि जब आप कलेक्टिवली करेंगे ना उसको सबके साथ, तब ये चेंज आएगा। अगर आज कोई पेरेंट अपने बच्चे को बोले कि आपको सोशल मीडिया पे नहीं होना है, क्या जरूरत है छोटे छोटे बच्चों को सोशल मीडिया पर होने की? इनफैक्ट स्कूल के किसी भी बच्चे को सोशल मीडिया पे होने की क्या जरूरत है? सोशल मीडिया किस लिए बना था? कि भाई जो तुम बिछड़ गए इतने सालों बाद, जो स्कूल के फ्रेंड्स थे वो सब कनेक्ट होते हैं। अभी तो हम स्कूल में ही है ना सब फ्रेंड्स के साथ, हमें किसके साथ कनेक्शन जोड़ना है? हम उन्हीं फ्रेंड्स के साथ सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं रादर देन कनेक्टिंग इन अ फिजिकल मैनर। तो एक स्कूल के बच्चे को सोशल मीडिया हैंडल क्यों होना चाहिए उसके पास? फॉर वॉट? क्या सीखना है उसने सोशल मीडिया से? और ही उनके अंदर कौन सा संस्कार जा रहा है कंपेरिजन का, और उनके अंदर कौन सा संस्कार जा रहा है कि लव, जब लोग मेरी फोटो को अच्छा बोलते हैं, जब लोग मुझे अच्छा बोलते हैं, देन आई एम अ नाइस पर्सन। सेल्फ रिस्पेक्ट क्रम्बल हो जाती है सोशल मीडिया से। बड़े जो है ना एडल्ट्स, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी सोशल मीडिया की वजह से एकदम हिली हुई है इस टाइम, कि लोगों ने मेरा पोस्ट लाइक नहीं किया, मुझे बारे में ये लिख दिया, मेरे बारे में अच्छा नहीं लिखा। ऐसे बन गए हम कि प्लीज मुझे लाइक करो, प्लीज मुझे अच्छा बोलो, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। ये अडल्ट्स पर असर हो रहा है। तो जिनकी सेल्फ एस्टीम अभी डेवलप होनी है, बननी है, वो अगर इस एज में सोशल मीडिया पर होंगे तो उनकी सेल्फ एस्टीम पर असर नहीं होने वाला? होने ही वाला है, होने वाला है। पर ये असर हमें बहुत बाद में जाके दिखेगा, तब तक उनकी स्कूलिंग पूरी हो चुकी होगी. तो वी नीड टू इनकल्केट दिस इन स्कूल कि सोशल मीडिया हैंडल्स आर नॉट मेंट फॉर स्कूल चिल्ड्रन. दे नॉट मेंट फॉर स्कूल चिल्ड्रन. दे डोंट नीड टू हैव ऑल दीज अकाउंट्स. लेकिन आजकल पेरेंट्स ही छोटे छोटे बच्चों के सोशल मीडिया हैंडल्स खोल देते हैं. इट्स नो, इट्स नॉट फॉर देम. इट्स जस्ट नॉट फॉर देम. जब हम छोटे थे तो कुछ मूवीज ऐसी होती थी, ये एडल्ट है, ये मूवी पे नहीं जा सकता बच्चा जब तक वो 18 साल या 20 साल. अभी कुछ है ही नहीं ऐसा, कुछ भी नहीं है. हर तरह का वीडियो आ रहा है, हर तरह का. हम कभी अगर बैठ के एक बार सोचे तो हम डर जाएंगे आने वाले समाज से कि ये समाज क्या बन जाएगा जब ये बच्चे इतनी छोटी एज से इस तरह का कॉन्टेंट कंज्यूम कर रहे हैं. व्हाट सोसाइटी आर वी लुकिंग फॉरवर्ड टू. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इमोशनल डाइट पर ध्यान रखना. सोशल मीडिया शुड बी एन एब्सोल्यूट नो नो फॉर अ स्कूल चाइल्ड. एब्सोल्यूट. हम बोलते हैं हम उसमें से अच्छी चीजें ले रहे हैं. कुछ भी नहीं है उसमें से जो हमें हमारे पेरेंट्स और स्कूल से नहीं मिल सकता. कुछ भी नहीं है उस पे जो हमें हमारे बड़ों से या हमारे फ्रेंड्स से स्कूल में नहीं मिल सकता. लेकिन बहुत कुछ है उसमें जो हमारे पास नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए. सो इट शुड बी. बट पेरेंट्स की कही हुई बात बच्चा नहीं सुनता है. दिस विल हैव टू हैपन थ्रू स्कूल. ये स्कूल से होना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी का आपने स्कूल में बच्चों को सिखाया नो प्लास्टिक. वो घर पे आके अपने पेरेंट्स को सिखाते हैं नो प्लास्टिक, क्योंकि बच्चे के ऊपर स्कूल का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है. स्कूल ने सिखा दिया नो प्लास्टिक, बच्चा घर आके बोलता है मम्मी पापा को वी आर नॉट गोइंग टू यूज प्लास्टिक. आपने सिखा दिया नो क्रैकर्स, घर पे आके बच्चे सिखाते हैं हम नहीं पटाखे बजाएंगे. मम्मी पापा बोलते हैं थोड़े बजाएंगे ना, शगुन है, दिवाली है. नो नो नो, मैम ने बोला है हमें पटाखे नहीं बजाना. इट इज सो इजी टू चेंज सोसाइटी थ्रू स्कूल. कितना आसान है. आपने बच्चों को बोल दिया, बच्चे चेंज हो गए, बच्चों ने जाके अपने मम्मी पापा को चेंज करना है. दैट्स द वे वी हैव टू गो. दैट्स द वे वी हैव टू गो. तो अब अगर आप बच्चों को सिखाएंगे नो सोशल मीडिया, तो बच्चे जाके अपने मम्मी पापा को भी सोशल मीडिया से थोड़ा कम कर देंगे कि इतनी देर इस पे नहीं बैठना, ये थोड़ा हानिकारक वाली चीज है, मेरी मैम ने बोला हुआ है. वी हैव टू गो द अदर वे अराउंड. संस्कार सिर्फ बड़ों से छोटों से को नहीं, हरेक से हरेक को मिल सकते हैं. हरेक से हरेक को मिल सकते हैं. सो वी इनकल्केट दिस इन स्कूल कि आप कितना स्क्रीन टाइम यूज करते हैं. पढ़ाई के लिए यूज करते हैं अलग चीज है, उसके अलावा आपका स्क्रीन टाइम कितना है. उसके ऊपर बार बार सेशंस होने चाहिए कि स्क्रीन टाइम का माइंड पे असर, ब्रेन पे असर, बॉडी पे असर, इमोशनल हेल्थ पे असर, फिजिकल, इसका इतना रब इन होना चाहिए कि 100% हर बच्चा कन्विंस हो जाए कि ये चीज मेरे लिए हानिकारक है. फिर वो अपने आप अपने को डिसिप्लिन करेंगे. देन दे डोंट नीड एनीबडी एल्स टू डिसिप्लिन देम. लेकिन उनको इन्फॉर्म्ड बार बार करना पड़ेगा क्योंकि वो चीजें अडिक्टिव हैं. वो चीजें अडिक्टिव हैं, वो बनी अडिक्ट होने के लिए हैं. वो बनी ही हैं ऐसे ताकि हम उनको अडिक्ट हो जाएं. तो हमें अपने बच्चों को उस अडिक्शन से तो बचाना होगा ना. ये एक अलग अडिक्शन है. हम उनको अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग्स, ये सब अडिक्शन से तो बचा लेंगे, लेकिन इस अडिक्शन से उनको कौन बचाएगा. और ये अडिक्शन तो वो बचपन से ले रहे हैं, वो वाली चीजें तो फिर भी 18-20 साल के बाद लेंगे, ये तो ये बचपन से लेते जा रहे हैं. So this is an addiction and we have to protect them from this addiction and it has to happen in school. कि वो कौन सा content consume कर रहे हैं, उनकी vocabulary क्या है. शब्दों पर बहुत महत्व होना चाहिए. अपनी मातृभाषा अच्छे से आनी चाहिए. भले हम एक English medium school हैं, बच्चे को अपनी mother language आती है क्या, अपनी regional language आती है क्या. क्योंकि शब्द सिर्फ एक भाषा नहीं होते, शब्द एक संस्कार होता है. जब हम उस शब्दों का उच्चारण करते हैं हमारे थ्रू एक वाइब्रेशन जाती है. बट अगर हम घर में भी सिर्फ इंग्लिश बोल रहे हैं और फिर हम कहते हैं आई डोंट नो हिंदी वेरी वेल, इट्स नॉट समथिंग टू बी प्राउड ऑफ. इट्स नॉट समथिंग टू बी प्राउड ऑफ. लेकिन समाज उस तरह से बन गया, हाँ इसको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, हिंदी नहीं आती. नहीं कोई बात नहीं ना, नहीं आती उससे क्या फर्क पड़ता है, हिंदी में कौन सा काम होना है. हिंदी एक एनर्जी है, हिंदी एक वाइब्रेशन है. जब हम उन शब्दों का उपयोग करते हैं हमारे थ्रू एक एनर्जी क्रिएट होती है. सारी भाषाएं सीखें लेकिन आपकी अपनी जो भाषा है वो हमें आनी चाहिए और उस भाषा को बोलने में हम कंफर्टेबल होने चाहिए और हम उस भाषा को बोलने में गर्व महसूस होना चाहिए. ये नहीं है कि जो हिंदी बोल रहे हैं वो ऐसे हैं जो इंग्लिश बोल रहे हैं. ये सब बिलीफ सिस्टम्स को बहुत चेंज होने की जरूरत है एंड दिस कैन हैपन ओनली फ्रॉम स्कूल. ये सिर्फ स्कूल, बाद में तो इट्स अ लिटिल टू लेट. a little too late. It has to happen from school. लेकिन हमने उसमें ये कर दिया, नहीं नहीं इंग्लिश ही सिर्फ. क्यों इंग्लिश ही सिर्फ? उसकी जो हमारे प्रांत की भाषा है, जो हमारे देश की भाषा है, वो सब हमारे लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट होनी चाहिए. कम ज्यादा की बात नहीं, लेकिन कम से कम उतनी ही इम्पोर्टेंट तो होनी चाहिए ना. क्यों? पहले वो भाषा वो नहीं यूज करते, फिर उसके बाद वो कपड़े वो वाले नहीं पहनते जो हमारे यहाँ की संस्कृति है, फिर उसके बाद वो खाना नहीं खाते जो हमारी संस्कृति. वो धीरे धीरे चेंज होता है सारा कुछ. फिर उसके बाद व्यक्तित्व ही बदल जाता है, फिर व्यक्तित्व ही बदल जाता है, क्योंकि देन वी आर अ वेरी डिफरेंट. हम कंफ्यूज्ड है कि हमारा कल्चर क्या है, क्योंकि हम एक अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करके पकड़ के नहीं रखते हैं. तो वो घरों में क्या हो रहा है, अब ये तो हम नहीं कर सकते ना कुछ, लेकिन स्कूल में तो हम कर सकते हैं. स्कूल में हम ये सब कुछ कर सकते हैं. वो स्कूल से जाके ना वो बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ हिंदी में और उनकी जो रीजनल लैंग्वेज में है वहां से बात करेंगे, क्योंकि आजकल पेरेंट्स भी इंग्लिश में बात करते हैं. सिर्फ घर में इंग्लिश में बात करते हैं. वी फील इट्स गुड टू से कि मुझे हिंदी नहीं आती है, या मुझे अपनी मराठी गुजराती पंजाबी जो भी मेरी लैंग्वेज है मेरे रीजन की मुझे वो नहीं आती है. दिस इज ऑल गोइंग टू अफेक्ट द कल्चर ऑफ द कंट्री. ये अफेक्ट करेगा. सो दीज आर ऑल आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑल आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. तो उसके लिए पहले हम अपने पे ध्यान रखेंगे, हमारे लिए करना बहुत ईजी हो जाएगा. तो इमोशनल डाइट का उनको बार बार एम्फेसिस करना है कि जो हम सुनते पढ़ते देखते हैं टीवी से, इंटरनेट से और फोन से, इसके बारे में तो रोज एक बार तो बच्चे को पता चलना ही चाहिए, दो मिनट में किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी क्लास के अंदर. जब तक रोज नहीं पता चलेगा, वो इतना समाज में हावी है कि वो डी एडिक्शन होना बहुत डिफिकल्ट है. इतना ज्यादा हावी, इट्स समथिंग विच इज टू कम लाइक अ रिमाइंडर एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल डे. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट उनको ये जरूर बताना है कि आप खाना खाते समय फोन और टीवी नहीं यूज कर सकते. दिस हैज टू बी एन एब्सोल्यूट नो नो. खाना खाते समय किसी भी घर के अंदर फोन और टीवी ऑन नहीं होना चाहिए. डिस्ट्रैक्टेड ईटिंग कि तुम टीवी देखो और ये खाना खत्म कर लो, मैं हैप्पी हूं, तुमने दो अपने फुलके खा लिए, तुमने अपने दूध का ग्लास पी लिया, तो मैं हैप्पी हूं. ये क्यों हुआ? क्योंकि मम्मी पापा बिजी थे. अब उनके पास पुराने जमाने जैसे उतना टाइम नहीं था गोल 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 घूम के खाना खिलाने के लिए. तो उन्होंने कहा तुम टीवी के साथ बैठो, मैं खाना खिला देती हूं, 10 मिनट में खाना पूरा हो जाता है और हम खुश हो जाते हैं कि मेरे बच्चे ने खाना खा लिया. किस स्थिति में खाया? क्या देखते हुए खाया? क्या सुनते हुए खाया? डिस्ट्रैक्टेड ईटिंग इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ तीनों पर असर करते हैं. माइंडफुल ईटिंग प्रैक्टिस कि हम पहले साइलेंस में बैठेंगे, फिर हम परमात्मा को याद करेंगे, फिर हम शुक्रिया करेंगे, फिर हम अपनी प्रार्थना मेडिटेशन हम खाने के अंदर बोलेंगे, फिर हम खाना खाएंगे. दिस हैज टू बी टॉट फ्रॉम स्कूल. तो इसका अलग सब्जेक्ट नहीं, उन्हें अपने सब्जेक्ट में कहीं 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 बीच बीच में शेयर करना है उनके साथ ये सारा कुछ, कि डिस्ट्रैक्टेड ईटिंग आपकी कॉन्सेंट्रेशन को घटाती है, आपकी विल पावर को घटाती है, आपके फोकस को घटाती है. माइंडफुल ईटिंग आपकी एनर्जी को बढ़ाती है. जैसा अन्न वैसा मन होता है, और जैसा मन वैसा तन होता है. तो अन्न कौन सा खा रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो डिस्ट्रैक्टेड ईटिंग नीड्स टू स्टॉप, क्योंकि इनमें से कई बच्चे वो हैं जो मतलब एक दो साल की एज से ही स्क्रीन के साथ खाना खा रहे थे. ये वो वाले बच्चे हैं बहुत सारे, जो एक दो साल की एज से ही उनके सामने एक फोन रख दिया जाता है या कंप्यूटर पे कार्टून फिल्म चलाई जी जाती है और उनको खाना खिला दिया जाता है. अब वो चाहे कितनी भी एज तक पहुंच गए हो, उनको ये आदत चेंज करनी है. ये आदत चेंज करनी है कि खाना आपको बिल्कुल अकेले साइलेंस में बैठना है, बातें करो, कहानी सुनो, कुछ बोलो, लेकिन खाने खाने के टाइम नो स्क्रीन. क्योंकि ये सब करके फिर बोलना मेरे से कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रहा, मेरे से फोकस नहीं हो रहा, मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही, मुझे डर लग रहा है, फिर उस टाइम पे तो हम अंडू कैसे करेंगे पूरी साल की गलतियों को, कैसे अंडू करेंगे? तो ये छोटी छोटी चीजें हम अगर सिखाएं, और उसके लिए पहले हम खुद प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब तक हम खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे हमारी बात का असर नहीं होने वाला किसी के ऊपर. तो पहले हम खुद प्रैक्टिस करेंगे. अब स्पिरिचुअलिटी क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि स्पिरिचुअलिटी एक हेल्दी इमोशनल डाइट होती है. जब आप ज्ञान स्टडी करते हैं, जब आप मुरली सुन रहे हैं, परमात्मा की महावाक्य सुन रहे हैं, इट इज द हाईएस्ट वाइब्रेशनल कंटेंट, हाईएस्ट वाइब्रेशनल कंटेंट। तो जब लो एनर्जी कंटेंट हमें नीचे लेकर आ सकता है, तो हाई वाइब्रेशनल कंटेंट हमें बहुत ऊपर लेके जा सकता है। तो हर रोज स्पिरिचुअल स्टडी, मेडिटेशन, हर रोज, ये तो दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। हर सेशन शुरू करने से पहले एक मिनट क्लास में साइलेंस में बैठे, एक मिनट क्लास में साइलेंस में। आप क्लास में एंटर होते हैं, हो सकता है कई बार क्लास में बहुत आवाज हो, बहुत शोर मच रहा हो, आप शोर मचा के उनको चुप ना कराएं, आप सिर्फ वहां साइलेंस में जाके खड़े हो जाएं। चाहे पहली बार 5 मिनट लगेंगे, हो सकता है 10 मिनट लगे, वो लोग ना चुप हो, नेवर माइंड, धीरे धीरे उनको पता चल जाएगा कि ये मैम जब आती है तो ये 1 मिनट साइलेंस में खड़े होते हैं, मतलब इट इज टाइम फॉर अस टू स्टैंड। ये इस तरह से डस्टर नहीं दबाएंगी, ये जोर जोर से नहीं बोलेंगी कीप क्वाइट कीप क्वाइट, ये ऐसे नहीं करती है, ये मैम डिफरेंट है। डू दैट एंड 1 मिनट जब साइलेंस में हम बैठते हैं ना, हमारा माइंड बिल्कुल स्टिल हो जाता है। फिर आप जो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे वो ब्लॉटिंग पेपर के अंदर ऐसे चूसा जाएगा। 1 मिनट साइलेंस बिफोर द क्लास एंड 1 मिनट साइलेंस आफ्टर द क्लास। आफ्टर द क्लास के 1 मिनट आप साइलेंस में बैठो, जो कुछ आपने सुना समझो, रिवाइज करो और एक थॉट क्रिएट करो, आई एम अ पावरफुल सोल, माई कॉन्सेंट्रेशन इज हाइएस्ट, आई एम फोकस्ड, सक्सेस इज सर्टन फॉर मी। ऐसे 3-4 उनको थॉट्स देने हैं रोज, इट्स लाइक अ लिटिल प्रेयर फॉर देम, शुरू में भी और एंड में भी। ये उनकी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देगा, एकाग्रता शक्ति बढ़ जाएगी, उनके सारे स्ट्रेसेस खत्म हो जाएंगे। आज बच्चे परेशान हो रहे हैं अपने आप से कि मुझसे कॉन्सेंट्रेट नहीं होता, मुझसे कॉन्सेंट्रेट नहीं होता, दे गेटिंग सो पैनिक्ड बिकॉज ऑफ दैट। बट वो कहां से लाएं कॉन्सेंट्रेशन, वो तो कोई चीज नहीं है ना जो उनके मम्मी पापा खरीद के दे सकते हैं उनको, कॉन्सेंट्रेशन दे लो, दे डोंट नो हाउ टू क्रिएट इट नाउ। और वो इसका रीजन बहुत बड़ा हमारी एनर्जीज है, जो हमारे वातावरण में बहुत डिस्टर्बिंग और डिस्ट्रैक्टिंग एनर्जीज है। तो बच्चों को थोड़ा सा ध्यान रखना ही होगा। तो अब क्योंकि ये बहुत समय के बाद आ रहे हैं स्कूल में और एक नए एक्सपीरियंस के बाद आ रहे हैं, दिस इज द बेस्ट टाइम टू क्रिएट अ चेंज। बहुत इजी होगा कि वी हैव ऑल गॉन थ्रू अ लॉट, वी ऑल कम आउट पावरफुल, बट वी आर नाउ गोइंग टू एनर्जाइज आवर माइंड एंड बॉडी। कोविड इज स्टिल इन द एयर, बट वी आर नॉट गोइंग टू गेट स्केयर्ड, वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ। So we're going to protect ourselves with this, छोटी छोटी चीजें अगर वो करना शुरू करते हैं, अभी उनके संस्कारों में चली जाएगी। और जो संस्कार में चली गई, तो फिर कल वो बच्चा चाहे हॉस्टल में रहे, परसों वो बच्चा किसी दूसरे देश में जाके रहे, कोई चिंता नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि उस बच्चे का व्यक्तित्व बन जाता है, वो उसकी पर्सनैलिटी, उसका संस्कार बन जाता है। वो कहीं भी रहकर अपने संस्कार, अपनी संस्कृति को पकड़ के अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलता है, भले उसके आसपास के लोग कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। ऐसे बच्चे कभी भी पीयर प्रेशर से अफेक्ट नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे, चाहे आप उनको कहीं भी भेज दीजिएगा। ऐसा बच्चा कभी भी पीयर प्रेशर से अफेक्ट होकर कोई गलत कर्म या गलत संस्कार नहीं करेगा, जो बचपन से उस तरह से स्ट्रांग इमोशंस और स्ट्रांग संस्कारों के साथ बड़े होते हैं। तो इसलिए हर पेरेंट और हर टीचर की लाइफ में स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन ये एक्चुअली कंपल्सरी होना चाहिए हमारे लिए, ये हमारे लिए कंपल्सरी होना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि हम पूरी जेनरेशन को इंपैक्ट करने वाले हैं। तो हमारा सेल्फ केयर कंपल्सरी होना चाहिए। तो आई एम श्योर शिविका बेन राजयोग मेडिटेशन कोर्स जरूर अनाउंस करेंगी, तो वो मेडिटेशन कोर्स आप ऑनलाइन कीजिए। वैसे तो अभी सिचुएशंस काफी बेटर हैं, जैसे आपके स्कूल खुल रहे हैं ऐसे मेडिटेशन सेंटर भी खुल चुके हैं और वहां पे बहुत ध्यान रखा जाता है, हम दूर दूर बैठते हैं, तो बेस्ट तो होगा कि मेडिटेशन सेंटर पे जाकर सीखना चाहिए। लेकिन अगर आप वहां तक नहीं जा सकते फॉर व्हाटएवर रीजन, तो आप ऑनलाइन वाला मेडिटेशन कोर्स तो पहले जरूर करना है, या पहले ऑनलाइन वाला मेडिटेशन कोर्स कर लीजिए और फिर सेंटर पर जाइए, और सेंटर पे जाकर उसको फिर से मेडिटेशन एक्सपीरियंस कीजिए एंड इसको अपने जीवन का अब एक हिस्सा बना लीजिए। इट जस्ट हैज टू बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड आवर लाइफ इज गोइंग टू इम्पैक्ट मेनी मेनी लाइव्स एंड दोज मेनी मेनी लाइव्स इन रिटर्न आर गोइंग टू इम्पैक्ट मेनी मेनी लाइव्स। आप एक बीज की तरह हैं, एक सीड, आपके थ्रू एक पूरा वृक्ष ग्रो होने वाला है, आप हर एक बच्चे को जो एम्पावर करते हैं, आप लोगों के पास एलुमनाई लिस्ट कितनी अच्छी होती है, उसमें भी हम लिखते हैं ये बच्चा हमारा ये कंपनी का सीईओ है, ये बच्चा हमारा ये वाला एक्टर है, ये बच्चा हमारा ये वाला, विच इज गुड। लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखना है कि जो सीईओ है वो कितने हजार लोगों को इम्पैक्ट कर रहा है, वो हजार लोगों के हजार परिवार है। तो वो बीज जो हमने उसके अंदर डाला एज अ स्टूडेंट, आज वो हजार परिवारों का वृक्ष है सिर्फ एक स्टूडेंट। ऐसे हमारे कितने स्टूडेंट और कितने स्टूडेंट के थ्रू कितना परिवार, सो ऑटोमेटिकली आप पूरे समाज को इम्पैक्ट कर रहे हैं। आप सिर्फ उस 30-40 बच्चों को नहीं इम्पैक्ट कर रहे, पूरे समाज को कर रहे हैं। सो इट इज अज मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए स्पिरिचुअल स्टडी को और मेडिटेशन को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लें। हिस्सा कभी नहीं कहना टाइम नहीं है, टाइम तो थोड़े महीने एक दो महीने के लिए टाइम निकालना पड़ता है, उसके बाद तो माइंड इतना लाइट और हैप्पी रहता है कि टाइम तो बस ऐसे ही अपने आप निकलता जाता है, एक्स्ट्रा टाइम हो जाएगा उसके बाद क्योंकि माइंड लाइट होगा। तो इसलिए टीचर्स डे कोई और आपको गिफ्ट दे ना दे, क्योंकि इस बार आप स्कूल पे नहीं है टीचर्स डे पे, नहीं तो आपको सारे स्टूडेंट्स बहुत प्यारे प्यारे कार्ड्स लेकर आते हैं, बहुत प्यारे प्यारे गिफ्ट्स लेकर आते हैं, तो टीचर्स डे बहुत स्पेशल होता है। तो इस बार क्योंकि आप किसी से नहीं मिल रहे हैं तो अच्छा है ना, इस साल खुद खुद को गिफ्ट दे देते हैं। तो खुद खुद को गिफ्ट दे दीजिए। जो मेडिटेशन कोर्स अभी ग्रुप पे डाला है, चैट पे डाला है, उसके डिटेल्स ले लीजिए और फिर उस मेडिटेशन कोर्स को एक्यूरेटली फॉलो करके अपने ईक्यू को इधर हाई ले आइए और फिर आपके ईक्यू से पूरे समाज का ईक्यू बदलना शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया एंड बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच। ओम शांति।
ओम शांति दीदी, थैंक यू सो मच कि आपने कितने प्यारे तरीके से हमें इमोशनल क्वेश्चन के बारे में बताया, उसके साथ साथ हमें बताया कि कैसे हमारी जो वाइब्रेशन है, एनर्जी है, वो बच्चों पे कितना असर करती है। तो जितने भी टीचर्स और प्रिंसिपल और लोग हमसे जुड़े हैं वो जरूर इस बात से सहमत होंगे कि अब हमारी डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, स्टडी के साथ साथ हमें वाइब्रेशन की, एनर्जी फील्ड का भी ध्यान रखना है, ताकि हमारे बच्चे जरूर हमसे कुछ सीख के ही जाएं। और उसके साथ साथ हमें ध्यान रखना है कि अपने मन को भी स्वस्थ रखना है और उन बच्चों के मन को भी पावरफुल बनाना है। इमोशनल इलनेस और इमोशनल हेल्थ को भी अपने मन में हमेशा चेक करते रहना है कि किस तरह की फीलिंग्स हमारे अंदर हो रही है। और अपनी फ्रेग्रेंस को, तो जो हमें दीदी ने सिखाया कि फ्रेग्रेंस और वाइब्रेशंस को सबको दूर दूर तक महकाना है, ताकि उनसे और लोग भी महके। वी श्योरली अप्रिशिएट दीदी कि हम जरूर अपने इस समाज में वो जो आप सोसाइटी कह रहे हैं संस्कार वाली, जरूर बिल्ड करेंगे और हमारे सारी टीचर्स, हमारे सारे प्रिंसिपल्स और बच्चे मिलकर इस सोसाइटी को जरूर लेके आएंगे। सो वी वंस अगेन थैंक यू दीदी फॉर गिविंग अस सच अ मोटिवेशनल टॉक, और हमें इतना ज्यादा आपने जोश भर दिया है कि हम बस जल्दी से कल से ही, मंडे से ही शुरू हो जाएंगे अपने इन सारे प्रोसेस के साथ। सो थैंक यू वंस अगेन दीदी। ओम शांति।
थैंक यू।